نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دورہ قرآن 2021 اس میں سے آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 8 کریں گے. ولو اننا پارے کا آغاز بہت ہی اہم ہوتا ہے, اس کو پچھلے پارے کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو پچھلے پارے پورے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے معجزوں کا مطالبہ کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بات کرتے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اس کے باوجود جب لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ جب تمہیں چاہ نہیں تو ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کوئی راہ نہیں. ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں, یعنی جس جگہ جانے کی چاہت نہیں ہوتی اس کا راستہ ہی نہیں ملتا, پھر وہ کام ہی بڑا مشکل لگ جاتا ہے. ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ ایسا ہی اصول ہے. اس پارے کے شروع میں اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی کیوں ہرس رکھتے ہیں, چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ. آپ کی تڑپ, آپ کا بخا, آپ کی تڑپ پریشانی, آپ کا ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا, آپ کا ان کے لیے تڑپنا, راتوں کو جاگنا, ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہنا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے, ان کو بالکل فائدہ نہیں دے گا. بالکل اس بچے کی طرح جس کی ماں اس کو دوا کھلانا چاہے لیکن وہ منہ ہی نہ کھولے تو وہ دوا باہر کی بجائے اندر کی بجائے باہر گرے گی. بالکل اسی طرح سے ہدایت کے اعتبار کے ساتھ لوگوں کا کوئی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر حقیقت میں ہدایت نہیں چاہیے تو بے فکر ہو جاؤ, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے تم ہدایت کی طلب رکھتے ہوئے آئے تھے لیکن آگے اب تم سے چلنا مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑ دو ادھر اس سفر کو. چونکہ ہمارا اس سال کا تھیم ہی یہ ہے, القلب الباحث عن الہدایہ, وہ دل جو ہدایت کا طلبگار ہے. تو یہاں تھوڑا سا سختی کا انداز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ دل میں ہدایت کی تڑپ تو ہے لیکن ابھی آگے بڑھ کر تھام نہیں رہے. بالکل اس کو اپنے طور پر لے کر دیکھیے, کسی چیز کی طلب ہو کوئی پیش بھی کرے اور آپ لے ہی نہ. پانی 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 مانگا, جب پانی مانگا دینے والے نے دیا, کوشش بھی کی دینے کی لیکن آپ نے اس کو نہ پکڑا تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر بعد وہ چلا جائے گا. تو القلب الباخس عن الہدایہ, اگر حقیقت میں تمہارا دل ہدایت کی طلب رکھتا ہے, تڑپ رکھتا ہے, تو پھر تمہیں اس کو لینا پڑے گا. ہاتھ میں پکڑنے سے منہ تک نہیں جاتی, منہ پر لے جانے کے لیے ہاتھ میں پکڑ کر کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سنا چکے کہ وَحَدَيْنَاهُنَّ نَجْدَيْن, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں, اب اس کے بعد وہ مان جائے تو اس کی خوشی ہے اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو کوئی دے نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے آج کے ہمارے اس پارے کا بنیادی مرکزی خیال بھی یہی ہے. آیت 112 ہے اسی پارے کے بالکل آغاز میں, دوسری آیت ہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوہی وعدہم الی عباد زخرف القول زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوہ وفذرہم وما یفترون. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت نہ ہوتی, یعنی کہ وہ یہ ایسا کرتے تو وہ کبھی نہ کرتے, بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. آپ کو اس کے اندر ایک بیگانگی کا احساس ہوا, چھوڑ دو ان کو, اب کچھ دن ان کو چھوڑ دو. ماں بھی جب بچے سے بہت ناراض ہوتی ہے نا, پھر کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیتی ہے کہ تمہیں نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیتی ہوں تمہیں, تمہارے حال پہ. ہر رشتے میں آپ دیکھیے کہ انسان کی کچھ توقعات ہوتی ہیں, کچھ امیدیں ہوتی ہیں. جب وہ کوئی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا تو انسان پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. یہاں آپ کو اس میں دو چیزیں دکھیں گی اگر آپ نے اس آیت کو صرف اس طرح دیکھا. جو آج کا ہمارا مین تھیم ہے اس آیت کے ناطے سے, وہ زخرف القول غرورا ہے. زخرف القول غرورا جو آیت 112 میں آ رہا ہے, اگر اس پہ غور کر کے دیکھیے تو یہ کیا ہے. ज़ुख़रुफ़ कहते हैं सजावट को, मुलम्मा साज़ी, ज़ीनत के अंदर आता है। अगर आप इसको डिक्शनरी में ढूंढें, मुतरादिफ़ात में ढूंढेंगे तो ये ज़ीनत है, मगर वो ज़ीनत जो ज़ाहरी सजावट हो, मुलम्मा साज़ी कह सकते हैं, आप इसको जालसाज़ी कह सकते हैं। वो ज़ीनत जो मुलम्मा साज़ी से हासिल हो, इसको आप कैमोफ्लेज कह सकते हैं, चीटिंग कह सकते हैं, काउंटरफीट कह सकते हैं। और ज़ुख़रुफ़ के साथ जब कौल लग गया जैसे यहाँ, तो ऐसा बोलना कि हो झूठ लेकिन लगे सच, यानी कलाम को झूठ से आरास्ता करना। बहार के जो फूल खिलते हैं ना, तो नबातात के मुख्तलिफ रंगों को भी ज़ुख़रुफ़ कहते हैं, तो बहार, निखार। लेकिन जब लफ्ज़ कौल के साथ यहाँ आ गया जैसे ये, तो झूठी चीज़ पर हक का रंग चढ़ाने की कोशिश करना, पीतल को सोना साबित करने की कोशिश करना, बेवजन बात को बावजन साबित करने की कोशिश करना, प्रोपेगंडा करना, कैमोफ्लेज करना, और इस तरीके के हालात का शिकार हो जाना कि झूठ सच लगे और सच झूठ लगने लगे। और अमूमन ऐसा नजरियात के नाम पे होता है। दूसरे लफ्जों में आप कहिए कि हाफ ट्रुथ लोगों के सामने पेश करना, यह है ज़ुख़रुफ़ुल क़ौली गुरूरा। इसको शैतानी वही कहते हैं। शायद आप कांप जाएंगे मेरी इस बात को सुनकर कि नाउज़ुबिल्लाह ये कैसे हो गया। तो याद रखिए कि जैसे अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए नबी के दिल पर वही नाजिल की जिसको आज भी हम कुरान पाक की सूरत में ले रहे हैं, इसी तरह शयातीन भी वही करते हैं। सूरत अश-शूरा का आखिर अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो उसको याद आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का वालों ने जो इल्जाम लगाया, तो उसमें ये भी था कि आपके पास शैतान आता है और ऐसी वही करता है। तो इसको शैतानी वही की बात को सुनाने के लिए आपको मैं एक इमाम मुजाहिद रहमहुल्ला, इन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से 30 बार कुरान पढ़ा था, यानी ये उनके शागिर्दे रशीद हैं, इनका एक अमल सुना देती हूँ जिनके साथ जिंदगी में पेश आया। फरमाते हैं, कुफार जिन कुफार इंसानों के कानों में फूकते रहते हैं। खैर, वाकया पीछे से आगे चलता है। इकरमा कहते हैं कि मैं मुख्तार बिन अबी उबैद के पास गया, इसने मेरी बड़ी ताजीम और तकरीम की, अपने यहाँ मेहमान बनाकर ठहराया, रात को भी शायद अपने यहाँ सुलाता, लेकिन मुझसे उसने कहा जाओ लोगों से मिलो और उनको कुछ सुनाओ, यानी तुम्हें दीन आता है जाकर थोड़ा सा लोगों को दीन बता दो। मैं जाकर बैठा ही था कि एक शख्स ने मुझसे पूछा आप वही के बारे में क्या फरमाते हैं। मैंने कहा कि वही की दो किस्में होती हैं, एक अल्लाह की तरफ से, जैसे अल्लाह ताला सूरत यूसुफ में आयत 3 में फरमाते बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, यानी यहाँ वही का ताल्लुक नबी की तरफ है। और दूसरी वही शयातीनी, वही जो होती है वो शयातीन की तरफ होती है, यानी इसको वही शैतानी कहते हैं। जैसे वह कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन व शयातीन लिंसिवल जिन्नि, यह भी इसमें हमारी आयत में आ रहा है आज ही के पारे के साथ। यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ुल क़ौली गुरूरा, कहते हैं कि इतना सुनते ही लोग मेरे ऊपर पल पड़े, करीब था कि पकड़ कर मारपीट शुरू करते। मैंने कहा रे भाइयों, ये तुम मेरे साथ क्या करने लगे, मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है और मैं तो वैसे भी तुम्हारा मेहमान हूँ, चुनाचे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो इमाम मुजाहिद किस कौल से तस्दीक हो गई इस आयत में कि वही की एक किस्म शैतानी वही होती है। आप अपने इर्द गिर्द दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को गलत बातें कहते सुनते हैं, कभी सोचते हैं कोई कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहीं आप सुनते हैं कोई कहता है कि भाई मैं तुम्हें इस्लाम के खिलाफ कोई पूरा इज्म बनाकर कोई दिखा देता है, कभी लोग इस्लाम के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतने बुग़्ज़ में आते हैं कि आपके कार्टून बनाते हैं, कभी कोई कुरान पाक यानी मुसहफ के सफ़ों को जमीन पर रख के उस पर रक्स करता हुआ दिखाया जाता है, फ्लश में फेंका जाता है, ये सब कौन करता है। लिखिए यहाँ आज आपको एक बहुत बड़ी हकीकत सुनने मिलने में मिली है कि दुनिया में जब भी कोई गलत बात बोलता है, कोई इंसान बोलता है, कोई इदारा बोलता है, कोई NGO बोलती है, कोई स्कूल डार्विनिज्म के नाम पे कोई थेरी पढ़ाता है, उसके पीछे शैतानी वहियां होती हैं। तभी तो वो बंदा अपने आप को हक पे महसूस करता है। हक पे कहने वाला हक पे खुद को ना समझे तो कभी उस पे जमे ना। दुनिया में शैतान ने ये बहुत बड़ा जाल फैलाया हुआ है कि वो लोगों से गलत काम करवाता है और साबित ये करवाता है उनको कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, और तू मेरे बारे में तो बिल्कुल बेफिक्र हो जा और ये और वो। तो दुनिया में जितने झूठे नारे हैं, झूठे स्लोगन हैं, झूठी बातें हैं, ये सारी की सारी ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा है। गलत चीज़ों में रहेंगे, गलत लोगों में उठे बैठेंगे, शराब कबाब आपका पसंदीदा अमल होगा, जिस्म फरोशों के साथ होंगे, गंदे काम करेंगे, न्यूडिटी को फैलाएंगे, प्रॉन फिल्में देखेंगे सुनेंगे, तो शैतान आपके दिल पर ये वही करेगा। इसको आप इल्हाम के लिए जब वही कहें। अब सवाल है कि इस पारे को हमने क्यों इस थीम पे लिया, आपके सामने आयतों के नंबर लिखे हुए हैं, यानी इस पूरे पारे को जितनी भी दफा पढ़कर देखा इसमें से शैतान और शैतानी चीजें दिखती हैं, और कैसे अल्लाह सुभान व तआला इसमें हमें गौर व फिक्र की दावत देते हैं कि अगर इस दुनिया में तुमने अपने पीछे सिक्योर नस्लें छोड़नी हैं तो उनको इस कुरान से जोड़ना पड़ेगा। साथ साथ आपको इंशाल्लाह सूरत अल-अनआम आयत 123, फिर 128 से 29, फिर इसी तरह से 138 टू 40, 150, फिर 135, 136 टू 7 और 143 से 144 और 157। ये तो सिर्फ 8 मुकाम वो हैं जो सूरत अल-अनआम के हैं। इसके बाद जब सूरत अल-अराफ शुरू होगी ऐसे आपको लगेगा शैतान टूट पड़ा, क्योंकि शुरू में इतनी तफसील से शैतान का यहाँ किस्सा आ रहा है कि ऐसे लगता है कि इंसान अपनी आंखों से देखे। तो आयत नंबर 17-18, फिर 30, 31-33, 44, 47 से 48, इन सब की रोशनी में हम आज देखेंगे ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा को। हर साहिब दर्द शख्स को इस लफ्ज़ को सुनकर जरूर तकलीफ हुई होगी, हाय हाय शैतान की वही, हमने तो कभी नहीं सोचा था। जी, जैसे लोगों में रहेंगे वैसा ही होगा। फल खमहा फजूरहा व तकवाहा, और वाह्य का लफ्ज है ना, ये असल में दिल में ख्याल डालने के लिए आता है। आप इसको ये इंस्टिंक्ट कह दीजिए, आप इसको इल्हाम कह दीजिए। गंदे लोगों को गंदे ख्याल सोचते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे ख्याल सोचते हैं, नापाक लोगों को नापाक बातें अच्छी लगती हैं, पाकबाज लोगों को पाकबाज चीजें अच्छी लगती हैं। आप आम तौर पे जिन लोगों के बीच में जीते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द दो किस्म के लोग दिखेंगे, जिनके अंदर कुछ जाहिल होते हैं, आम तौर की जहालत है उनकी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि उनकी जहालत है। तो इसको अभी से समझ लीजिए, क्योंकि आपके मेरे लिए ये बात आगे पूरे पारे में चलने वाली है। तो बात यह है कि जितना ज्यादा इंसान इस चीज पे गौर व फिक्र करता है कि मैं किन लोगों में बैठी हूँ। इस वक्त आप माशाल्लाह इल्म की महफिल में हैं, अल्लाह का कलाम आप अपने घरों से भी सुन रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप फोकस होकर सुने। इस वक्त जितने भी इल्हाम आएंगे ना आपको इस महफिल के दौरान, ये अल्लाह की तरफ से होंगे, ये हक बात के होंगे। अल्लाह ताला आपको हक बात सुझाएगा, अच्छे आइडियाज आते हैं, अच्छा मुझे भी कोई नेकी करनी है, अच्छा मैं अपने आप को बदलूंगी, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। स्टूडेंट्स को खास तौर पर इसमें मुखातिब करूंगी कि इल्म की महफिल में बैठकर आप जो अच्छे अच्छे फैसले करते हैं ना, वो सारे अच्छे इल्हाम होते हैं जो अल्लाह की तरफ से आते हैं आपको। और जहां बैठकर फैसले किया करें, मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ, आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आपने कोई बड़ा फैसला करना है ना, तो इस इल्म की महफिल में कुरान पढ़ने के दौरान किया करें, क्योंकि कुरान पढ़ने के दौरान हम एक मोमबत्ती की तरह पिघल रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि मोमबत्ती जब जलती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ी होने लगती है, और कभी बुझा दें तो उसके बाद ठंडी होकर उसी शेप में अकड़ जाती है। इधर बैठकर आप पिघले हुए, अल्लाह ना करे कि यहां कोई अच्छा फैसला किए बगैर उठ गए तो बाहर जाकर आप फिर अकड़ दें। अगर यहां अकड़े हुए ना, कुरान की महफिल में, यानी इस वक्त वो महफिल चाहे आपके तनख्वाह अपने घर की महफिल है या आप किसी जगह बैठे हैं, अगर यहां अकड़ है इस वक्त सुनते वक्त आपकी नीयत कोई और है, जरा देखूं ये कितनी गलतियां करती हैं, जरा देखूं जरा इनका क्या मामला है, अच्छा जरा इनको तो देखते हैं ये क्या करते हैं, यकीन कीजिए बाहर निकलेंगे तो यही फैलाएंगे, हाँ कोई इतना अच्छा तो नहीं था। ऐसे ही बस बात ही है, हम भी कर लेते हैं, हमें भी आता है, हमारा भी बड़ा अच्छा हो रहा है, ये बातें करेंगे आप। इस फिल्म की महफिल में आए तो सिर्फ एक नीयत लेकर आए कि दिन सिरात अल मुस्तकीम, बस नथिंग एल्स, नथिंग अदर देन दिस, क्योंकि इसके बाद एक इंसान वैसे ही बाहर बनता है। हाँ इधर आप मोमबत्तियां बन के बैठे पिघले, कुछ आंख रोई कुछ दिल रोया, पिछले पारे को याद कर लीजिए कि जब तक आंख से आंसू ना बहे दिल के अंदर बात जाती भी कोई नहीं, दिल की मट्टी नरम ना हो तो अमल के बीज उगते भी नहीं है। यहाँ बैठकर रोया करें अकेले में। अब तो आप घरों से सुन रहे हैं अक्सर लोग इस साल, तो रोएं, तन्हाई में रोएं, अपने बच्चों के सामने रोएं, अपने आप को चेक करें कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, कहीं इस दिल का इलाज कराने की जरूरत तो नहीं है, और फिर उसकी कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि इसके साथ आपका दिल खुलेगा। लेकिन अगर यहाँ बैठकर रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, ये क्या, और ये इनका पता नहीं क्या मसलक है, पता नहीं ये किस फिरके से हैं, पता नहीं ये हमें क्या बना रही, एग्जैक्टली बाहर निकलकर आप ऐसे ही काम करेंगे और अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे होने से बचा ले, क्योंकि इसके बगैर आपका मेरा गुजारा नहीं है। आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इस महफिल से हिदायत लेके उठना है। देखिए, डॉक्टर की दुकान से दवा ना मिली तो कहां से मिलेगी, ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी ना मिली तो कहां से मिलेगी, गोश्त वाले की दुकान से आप गोश्त लेने की बजाय वहां सब्जी का तकाजा करें तो बेवकूफी होगी। आप डॉक्टर की दुकान पे जाकर कहें जरा एक मुकदमे का मामला बता दें, वो कहेगा लॉयर पे जाओ। जिंदगी में एक असूल आज याद रखिएगा, आप सबको जिंदगी भर याद रहेगा, कि इल्म की महफिल में या तो ना आए, बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, मत आगे बढ़िए, और अगर आए तो सिर्फ एहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तरह आपने दिल को झुका कर आए, वरना सुन सुनकर सुन हो जाएंगे। और बात कहने वाले की इज्जत दिल में ना हो, उससे मोहब्बत ना हो, और उस पर यकीन ना हो कि इसकी इसका इल्म प्योर इल्म है, तब भी बात समझ नहीं आती, फिर दुआ करें कि अल्लाह दिल के अंदर अगर इश्काल है, कोई बोझ है, तो उसको दूर कर दे, मेरा दिल खोल दे। कभी कभी शुरू में होता है कि बात कहने वाले के ऊपर एतबार नहीं होता, लेकिन चलो देखते हैं। और अल्लाह के नबी के पास जितने भी लोग आए, पहले शक वाले दिल से आते थे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अल्लाह दिल बदल देता था। ये तो उमर थे ना, कि आने से पहले ही दिल बदला हुआ था, क्योंकि दुआ लग चुकी थी उनको अल्लाह के नबी की। लेकिन आम तौर पे कई साहबी आप देखिए, तुफैल दौसी हैं, फिर इसी तरह सलमान फारसी हैं, चेक करते थे। ख्वाब बिन मालिक को देख लीजिए, ये पहले चेक करने आते थे, फिर अल्लाह के हुक्म से सच उनके दिलों में रासिख हो जाता था। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ऐसी कोई कैफियत है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सब जानने के बावजूद भी अगर अपना कुरान को समझना चाहेंगे तो फिर ये कुरान जबरदस्ती हिदायत नहीं देगा। आगे जाकर हम अगली सूरतों में पढ़ेंगे, हजरत नूह कहते हैं अपनी कौम को, अनुल जिमु कुमूहा, क्या मैं जबरदस्ती ये हिदायत तुम्हें ठप दूं? ये ठप्पा नहीं है जो वर्ड से दिया जाए, हिदायत दिल के रास्ते से आती है। आप अगर हिदायत की तालिबा हैं, और अगर आप हिदायत के तालिब बनकर इसको सुन रहे हैं, तो दरवाजा खोलिए और एक जुमला लिखिए कि दिल का दरवाजा अंदर से खुलता है, अंदर से खुलता है। अगर अंदर से ना खोले तो बाहर से लाख तड़पे, चाहे कोई वक्त का नबी ही क्यों ना हो, वो आपको हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि हिदायत अल्लाह की है और वो ही देता है। फैसला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ, मैंने किसको देना है, किसको नहीं देना। अब सवाल पैदा होता है कि जब हम शैतानी वही की इतनी लंबी बात कर रहे हैं तो ये होती क्या है, कैसे पहचानो, मुझे कैसे पता चले? तो पहली बात याद रखिये, धोखेबाजी की बातें होती हैं, मुलम्मा आमेज बातें होती हैं, छूटी बातें होती हैं, शैतानी चालें, तदबीरें, चिकनी चुपड़ी बातें, पुरकशिश नारे, पुरफरेब बातें, खुराफात, शकूक और शुभात, ये सब शैतानी वही होती है। इस दुनिया में जहां आप जा जी रहे हैं और मैं, और दिन ब दिन जिसमें हमारी नस्लों ने जीना है, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, पोते, नवासे, फिर उनकी नस्लें, याद रखिये, अब ये दुनिया इतनी सिक्योर नहीं है जिसमें हम अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाले हैं। पहले दौर और थे, पहले की जहालत और तरह की थी। तो जरा सा समझिए कि जहालत जिसका तोहफा है असल में शैतानी वही, यानी आप कह लें कि जाहिलों के दिलों पर शैतान अपनी वही करता है, तो उसका क्या इजहार है? तो जहालत दो किस्म की होती है, एक कहते हैं सिंपल जहालत, सिंपल इग्नोरेंस, सादी सी, ये वो थी जो बेचारे बूढ़े थे, सीधे साधे गांव देहाती, गांव के लोग, देहाती लोग, ऐसा बंदा, या आज भी ये वो जहालत है जो बेचारा किसी गुनाह में पड़ गया, बंदा अच्छा है काम गलत कर रहा है, सिस्टर अच्छी है लेकिन गलत कामों में पड़ गई, ये एहसास कि मैं जाहिल हूं, इसको सिंपल इग्नोरेंस कहते हैं। ये एहसास इल्म को खींचता है। रमजान आ गया, अब मैंने कुरान पढ़ना, रमजान आ गया, मैंने जॉब से छुट्टी ली, मैं कुछ अपना आखिरत का बनाऊं, ये बहुत प्यारी जहालत होती है। ऐसी जहालत का इलाज इल्म है, ये भी एक मरज है लेकिन जानलेवा नहीं है। ऐसे बंदे को जो ही ऑफर मिलती है, अच्छा चले मैं सुनूंगी, अच्छा मैं भी इस साल दौरे कुरान सुनती हूँ, हाँ मैंने काफी साल से नहीं सुना, अच्छा मैं दोबारा सुनूंगी, ये अच्छी है। और इसमें याद रखिए बड़े बड़े गुनाहगार लोग भी आ सकते हैं। हम अमूमन अपने कल्चर से देखते हुए हमेशा प्रोस्टिट्यूशन को बुरा समझते आए ना। अब आज उसी के सारे सांप के लाके लगा लीजिए फन और फ्रॉलिक के नाम पे, मैं उसी की बात करती हूँ। इवन एक जिस्म फरोश औरत को भी अगर किसी गलत हालात ने गलत चीज में डाल दिया और उसके अंदर ये जहालत है ना कि मुझे नहीं पता, तो वो कहती हाँ हमें तो कुछ पता ही नहीं। और आप देखिए आमतौर पर सीधे साधे भोले लोग यही कहते हैं, भाजी हमें कुछ नहीं पता, बता दें आपकी मासियां या कोई और, ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन जो जहालत यहां इस पारे में आपको दिख रही है, ये है कंपाउंड इग्नोरेंस, मुरक्कब जहालत। ये कौन लोग होते हैं? इनको नहीं पता कि इनको नहीं पता, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। और ऐसे लोगों के अमूमी जुमले क्या होते हैं? मुझे सब पता है, तुम चुप करो, बोलो नहीं, मुझे ना बताया करो, मैं सब जानता हूं, मुझे बड़ा इल्म है, तुम कोई नहीं हो जो मुझे सिखाओगी। ये वो लोग हैं जो जानलेवा मरज का शिकार है। ये है असल जहालत जिसको जिसका शिकार नबी के दौर में भी लोग हुए, ये है वो जहालत जिसका शिकार अल्लाह के नबियों के दौर में भी हुए और आज भी है। और अफसोस के साथ कि ये जहालत पढ़े लिखे लोगों में होती है, पैसे वालों में होती है, इन लीड्स में होती है, फॉरन डिग्रियां होल्डर यानी फॉरेन डिग्री होल्डर्स में होती हैं। उनकी दुनिया की डिग्रियां उनको इतना अपने ऊपर नाज करने के काबिल कर देती हैं कि उनको दीन के इल्म की तरफ आने नहीं देती। रैशनलिस्ट होते हैं ये लोग, इनकी नाक का मसला बन जाता है कि किसी से इल्म लें। वो ये नहीं कहते कि हम कुरान पढ़ेंगे, वो कहते हैं हम हाँ अरबी सीखने जा रहे हैं, हम अरबी पढ़ेंगे और अरबी को जानने की कोशिशें करने चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी इज्जत के खिलाफ लगती है ये बात कि मैं किसी से इल्म लूं। याद रखिए ऐसे लोग बड़े ही बदनसीब हैं, ये हिदायत का मजा नहीं पा सकते। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत की तौफीक अता फरमाए कि जो हमारी जिंदगी के अंदर खूबसूरतियां पैदा कर दें। आइए दुआ करते हैं, कुछ चीजें आयत को शुरू करेंगे तो भी मिल जाएंगी। इसी थीम के साथ हमारे पास जो आज की दुआ है जो आपने इस बारे के साथ याद करनी है, ये सूरत अल मोमिनून की आयत 97-98 है, वहां भी हम पढ़ेंगे लेकिन यहां आप याद करेंगे। और इलाज करने के लिए अपना ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। वकुर रब्बी आउज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन वाउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और कहो के परवरदिगार मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए परवरदिगार इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। दिन रात शऊर के साथ से दुआ किया करें कि अल्लाह किसी तरफ से शैतान मेरे दिल में आकर कोई फूक ना मार दे। आज की हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी पर शैतान का असर यानी वसवसा होता है और फरिश्ते का असर यानी इल्हाम होता है। शैतान का असर यह है कि इंसान से बुराई का वादा करता है और हक को झुठलाता है, और फरिश्ते का असर यह है कि वो खैर का वादा करता है और हक की तस्दीक करता है। तो जो शख्स ये पाए इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो दूसरा असर पाए यानी शैतान का, तो शैतान से अल्लाह की पनाह हासिल करे। क्या खूबसूरत असूल दे दिया। तो फिर आप अपने दिलों को चेक कीजिए, अमूमन दिल में अच्छे ख्याल आते हैं कि बुरे? अच्छे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको, आप हिदायत की तरफ चल पड़े हैं। दिन ब दिन आगे जाते जाते आप एक दिन जन्नत के दरवाजे पे खड़े हुए ये कह रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, सारी तारीफें उस जात के लिए जिसने मुझे यहां पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। मैं तो नहीं पहुंच सकती थी और पहुंच सकता था जब तक अल्लाह न चाहे। और याद रखिए अल्लाह के बचाए बगैर बंदा पहुंचता नहीं, सच्चे और खड़े हो जाइए। और ये रिवायत तिर्मिजी में है 2988 पे। आइए देखिए इस बारे में अनवाउल कुलूब, इस बारे में सिर्फ कल्ब ही नहीं अफिदा और सदर का लफ्ज भी आता है, वो इंशाल्लाह उन आयतों के साथ देखेंगे। यहां हम देखेंगे लफ्ज कुलूब को। अलानाम 120 अल कल्बुल आसिम वजरु जाहिर अल इस्मी व बातिनहु, तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी बचो। फिर आयत 43 अल आराफ अल कल्बुल हाकिद, ये आपके लिए नया नाम है। व नजान माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कुदूरत होगी इसे हम निकाल देंगे। चलेंगे जब आयत पे तो फिर देख लीजिएगा, शैतान की वही में एक वही क्या है कि साथ बैठे हुए साथ काम करने वाले एक माँ के पेट से निकले हुए लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरतें डाल देता है। इंशाल्लाह जब आयतों पे हम साथ साथ पढ़ेंगे, ये सारी आयतें मैंने आपको शुरू में लिखवा दी हैं, यानी शैतान दिलों को गंदा करता है। कदूरत कहते हैं गंदे को, मैला होना, दिल मैले होते हैं, हर बात कदम कदम पे होते हैं। इसीलिए तो कुरान पहले पढ़ाया जाता है फिर आपको काम दिया जाता है, वरना तो आप दो चार दिन ना साथ चले, इतने गलत फहमियों के पलंदे आपके दिलो दिमाग पे हों कि दूसरों की नेकी आपका गुना बनाओ और आप कहीं शम्मा न बन जाएं कि जो खुद जलेगी और दूसरों को रोशनियां देगी। अल्लाह हमारे दिलों को कि गिल से पाक कर दे। तो हाकिद वो दिल होता है जिसमें गिल होता है। फिर आगे देखिए, अल कल्बुल मोहतदी, अल आराफ 43, वमा कुन्ना लिनहतदी लौला हदानल्लाह, हम खुद राह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता। आज के आपके पारे में जन्नत की वो आयत आ रही है, जन्नती जन्नत के दरवाजे पे खड़ा ये जुमला बोल रहा है, अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे। फिर इस पारे में हिदायत से मुतल्लिक 6 आयतें जहां आएंगे हम देखेंगे, नंबर नोट कीजिएगा, 125 अल अनाम, 144, 154, 157 और आराफ सूरत में 30 और 52, ये दो आयतें आपको हिदायत से मुतल्लिक दिखेंगी। आगे चलते हैं, हमारे इस बारे में हम सूरत अलनाम का 111 से लेके 165 यानी सूरत के एंड तक पढ़ेंगे हिस्सा, यानी 111 से 165 तक आयात हैं इस हिस्से में सूरत अलनाम से मुतल्लिक। तो इनमें क्या है, हिदायत का ताल्लुक तलबे हिदायत से है। ताल्लुक कैसे है, हिदायत का ताल्लुक तलब से है। लिखिए, हिदायत सिर्फ उसको मिलती है जिसको तलब होती है, जहां तलब नहीं वहां हिदायत नहीं। इसमें जो मजामीन आने वाले हैं, जब हिदायत की तलब ना हो तो हिदायत नहीं मिलती। फिर इस्लाम दीन सिद्क और अदल है, अक्सरियत सीधी राह से भटका देती है इसलिए मेजॉरिटी इज नॉट द अथॉरिटी। फिर हवा नहीं हुदन के पीछे चलना है, ख्वाहिश परस्त नहीं बल्कि हक परस्त होना। फिर हलाल और हराम का फर्क महसूस करना है, इस पे वईद है। फिर कुरान इल्म बसीरत है, यानी कैसे आपके अंदर की आंख कुरान खोलता है ये आप इंशाल्लाह देखेंगे। और सबसे प्यारी आयतें इसमें जब पढ़ेंगे शरह सदर से, अमल आसान होते हैं। जब शैतानी वही होती है तो गुनाह आसान होते हैं, जब रहमानी वही होती है तो नेकियां आसान होती हैं। आपने दिल को पूछिए कि आप कहाँ हैं, किस तरफ हैं, कि जिससे आपको पता चल जाए कि आपके दिल में नेकियों के लिए सहूलत है या गलत कामों के लिए सहूलत है। और फिर देखेंगे कि अल्लाह कैसे जन्नत को सलामती का घर बनाकर हमें बुलाता है। और जो लोग सारी जिंदगी हिदायत के मौके को मिसयूज करते रहे, कयामत में अपने खिलाफ खुद गवाहियां देने वाले बनेंगे। और बाकी रहेगी बात ख्वाहिशें और दुआएं, ये अपनी जगह, लेकिन वली कुल दरजात मिम्मा मिलो, अमल के मुताबिक दरजात मिलेंगे। ख्वाहिश तो सबको हो, जन्नत अगर सिर्फ ख्वाहिशों पे मिलती तो कोई बाहर रहता। जन्नत की ख्वाहिश तो वो भी रखते हैं जो जन्नत को मानते भी नहीं। पैराडाइज लफ्ज तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया, चाहे उसको होटल का नाम दे दिया। तो जितनी तलब, जितनी ख्वाहिश, जितना इरादा, उतनी अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती जाएगी। फिर आगे हम देखेंगे इसी में कत्ले औलाद, एबॉर्शन, ये भी शैतानी वही है। मां बाप के दिल में डालता है, तुम इस बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी मां के दिल में डालता है, कभी बाप के, और कभी अनमैरिड कपल उनके दिल में डालता है कि अब अपने गुनाह की इस यादगार को कैसे खत्म करें। और फिर उन डॉक्टर्स के पास ले जाकर एबॉर्शन के नाम पर उनको आजमाते हैं कि इस बच्चे को अवॉर्ड करा दो। और आज इसकी जो दास्तान गम है, ये दिल के अंदर फफोले बन के पटकती है। फिर इसके बाद हम अल्लाह ताला की निशानियों को देखेंगे। दीन इस्लाम में हराम चीजों का थोड़ा बहुत तस्करा यहां दोबारा आ रहा है, और पूरे दीन का खुलासा जिस आयत में वो हम इस हिस्से में पढ़ेंगे। कुरान किताब हिदायत है, इसको देखेंगे। और फिरका वारियत की मुजम्मत, यानी असल में उम्मत को जो एक प्लैग लगा है ना आज इस वक्त, जो दीमक चिपकी हुई है, जो सारा खून निचोड़ रही है ना, हमारे हज उमरे और हमारे रोजों और सारी इफ्तारियों करने के बावजूद आज क्यों नहीं दीन की रूह, क्योंकि फिरकाबाजी बहुत है। फिर हर नेकी का अजर 10 गुना है, ये भी आपको इस हिस्से में मिलने वाला है, खुश होंगे आप उस आयत को पढ़ के। और अल कुरान हयाती, ये कुरान मेरी जिंदगी है, ये आयत भी आपको इसी में दिखेगी। कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, इसलिए अपना बोझ उतना ही जमा करो जितना उठा सकते हो। और आखिरी आयतों में हम देखेंगे कि नेमतें आजमाइश हैं, अल्लाह ताला में नेमतों की आजमाइश से बचा ले। तो आइए देखते हैं सूरत अलनाम को, आयत 111 से शुरू होगी और 165 तक हम इसको पढ़ते ही जाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون اللهم جهالة سے بچا دے۔ آیت 111 سے 113 تک ایک ہی گو میں ہمارا جو टॉपिक है, लिखिए, जब हिदायत की तलब ना हो तो मोजज़ों का मुतालबा होता है, फिर भी इंसान हिदायत की पुकार पे लब्बैक नहीं कहता। आइए देखते हैं। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लग जाते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू ले आते और लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज ईमान न लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। क्या खूबसूरत आगाज है बारे का। याद रखिए कि जहालत कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी, जितनी जहालत उतनी हक से दूरी। तो क्या पता चला वलाकिन अक्सरहुम यजहलून पे कि हक परस्ती सिर्फ उसी को अच्छी लगती है, सिर्फ वही हक परस्त होगा जो सच की तलाश और तलब रखेगा। आपको अल्लाह ने यहां ऐसे नहीं बिठा दिया, याद रखिए, अपने आप को मुबारक दीजिए, खुश हो। लोग फिक्शन पढ़ते हैं, लोग गंदगी फैलाते हैं और लोग दीन के नाम पे भी इधर उधर की बातें करते हैं। आपको अल्लाह ने उस वही के सामने पेश कर दिया जो अल्लाह ने कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की थी। अपने आप को शाबाश दीजिए कि मैं आकर बैठ गई, मैं अब सुनने लग गया हूँ, मैं सुन रही हूँ। क्यों? क्या मेरे दिल पर वो कलाम उतर रहा है इस वक्त जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरता था? और चेन कहाँ से चली? अल्लाह से शुरू करके जिब्राइल, जिब्राइल से शुरू करके कल्बे मोहम्मद, कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुबाने नबूवत और जुबाने नबूवत से फिर सहाबा के सीनों ने केज बनाकर इस वही को हिफ्ज किया और वहां से फिर आपके तक, मेरे तक, मुख्तलिफ ताबईन, तबा ताबईन, आइमा किराम, मुहद्दिसीन तक होते हुए आज हमारी जुबानों पे आया। कितने खुशबख्त हैं, क्या गोल्डन चेन है। आज जो कुरान पढ़ाता है ना, जो मुबल्लिग, जिसकी जुबान पे सिर्फ कुरान की आयत और उसको समझाने के लिए हदीस है, उसका सिलसिला खुद बहुत पीछे जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। दुआ करिए कि अल्लाह हमें इसी में रखे। दूसरी बात क्या है, जज्बात की बजाय अकल का इस्तेमाल कीजिए। हक परस्ती के लिए और दुनिया से जहालत के अंधेरों को खत्म करने के लिए इमोशंस को पीछे कीजिए, अक्ल को सामने रखिए। आज दीन की दावत देने के दौरान बास लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, मुक्के मारने लगते हैं, जोश आता है, आंखों में खून उतर आता है और फिर जो गलत लकब बोल सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बास दफा बच्चे सहम जाते हैं कि अंकल को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो तो अंकल नहीं कहते, ये मैंने कहा है, वो तो कुछ और ही कहते हैं। कभी कभी याद रखिए कि ठंडा दिल दिमाग हिदायत के तालिब को आपकी बात सुनने पे ज्यादा माइल करता है। और आप अपने बच्चों पे इसको आजमा लीजिएगा, 10 दफा गुस्से में कहने की बजाय 1 दफा नरमी से, जज्बात की गर्मी से बात करें, बच्चे की आंख में आंसू आ जाएगा। ये तो हमने उनको ढीठ कर दिया ना, सुन कर दिया बुला बुला कर और बता बता कर। और तीसरी चीज याद रखिए कि मौजज़ात की बजाय अमली इकदामात। अल्लाह ताला ने इस आयत में जो पैगाम दे दिया कि देखो तो सही कि ये मुतालबे कर रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आकर कभी ये कहते हैं कि सफा पहाड़ सोने का बन जाए, कभी कहते हैं यहां हमारे महल बन जाए, ये बन जाए, कभी कहते मदीना शहर में पानी के चश्मे निकलने लगे और कुएं बने। छोड़ दीजिए, ये तो मुर्दों को कब्रों से आता सुनकर, कब्रों से मुर्दे निकले, इन्हीं के बड़े बाप दादा, और वो आकर कह भी देना कि लोगों हमने कब्र में ये जान लिया था कि दो सवालों में एक सवाल क्या था कि मन रब्बू का, तो उसका जवाब मुझसे तो सही नहीं दिया गया लेकिन उसका जवाब ये था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम एक अल्लाह के साथ लात मनात उज़्ज़ा यौक यगूस नसर को लगाए बैठे हो। ओ मेरे बच्चों, मेरे पोतों के पोतों के पोते, मैं तुम्हें बताता हूँ, कब्र में मैं इस सवाल में फेल हो गया था जब मन रब्बू का पूछा गया था। कब्र के तीन सवाल हैं बस, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, मैं भी इसी की कर रही हूँ, मन रब्बू का, मर रसूलू का, मा दीनू का। तो कब्र से निकल कर फौज शुदा जो 100 साल पहले था, वो आकर भी इन मक्का वालों को या ऐसी ज़हनियत रखने ले आज के लोगों को ये कह दे, ये फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? चाहत नहीं है, मुंह नहीं खोल रहा। बच्चा फूफू करके सारा सेरेलेक फेंक देता है जब उसको तलब नहीं होती। मत लोगों को इधर उधर अल्लाह के वास्ते भेजा करे मैसेजेस, 100-100 मैसेज आप एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, और आप इसी पैगाम को जो आपको इतनी मोहब्बत और प्यार से सिखा रही हूँ, आप तस्वीरों की सूरत में 100 दफा भेजिए, ये नेकी नहीं होगी, कोई हिदायत नहीं मिलती। और अपनी किताब फाड़ कर आप दूसरों को देते हैं, इतनी सस्ती है हिदायत, राजातों को नहीं मंडी जाती। हदीस में आता है कि जब तक लोग डिजर्व ना करें, उनको हिकमत ना सिखाओ, उनको दीन ना सिखाओ। हाँ, करना है जहन तैयार कीजिए, छोटी छोटी बातें उनको दीजिए, उनको प्यार से बुलाए, उनको कोई 1 मिनट का क्लिप दे दे, उनको दो मिनट का दे। और कुछ लोगों की जो बर्दाश्त है ना, वो 1 मिनट से कम है। अब इस साल ये भी होने लगा कि विद इन वन मिनट के क्लिप्स बनने शुरू हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि वाकई दिन ब दिन लोगों का हाजमा कमजोर होता जा रहा है। पहले दो दो तीन तीन घंटे की चीजें भी लोग ले लेते थे, अब कहते हाय 3 घंटे की ऑडियो, ना 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 छोटी दे, हाय 2.5 घंटे का दर्द, ना 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 3 घंटे, तौबा तौबा, देखो मिलता के अंदर। तो मैं 30 घंटे की चीज 3 घंटे में अल्लाह दे दे, इससे बड़ा तुम्हारे लिए तोहफा क्या है? लेकिन दीन के नाम पे हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो चलिए, जो नए लोग हैं उनके लिए 1 मिनट का क्लिप भी बहुत बड़ी बात है। आप डाल दीजिए किसी इंस्टाग्राम पे, डाल दीजिए किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे, वो ले आएगा लोगों को। लेकिन आप जैसे लोग माशाल्लाह, जो इल्म दोस्त हैं, जो जिनको हिदायत मिल चुकी है, वो तो कम से कम इसको लेकर, इसकी कदर के साथ इसको लेकर चले, दावत दीजिए लोगों को, बुलाइए, बिठाइए। जिस बात ने आपका दिल बदला, वो बात उनका भी दिल बदलेगी इंशाल्लाह ताला। कागज के लिखों को कोई दिल पे लिखा मत समझे, कापियां तो इतनी प्यारी है हमारे पास, कोई फायदा नहीं होता अगर उसमें लिखेंगे नहीं तो। फिर फरमाया, और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बाजों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि इनको धोखे में डाल दें, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम न कर सकते। सो इन लोगों को और जो कुछ इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इसको आप रहने दीजिए, और ताकि इसकी तरफ इन लोगों के कुलूब मायल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, ताकि इसको पसंद कर लें, और ताकि मुर्तकिब हो जाएं इन उमूर के जिनके वो मुर्तकिब होते थे। क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इसमें एक बहुत बड़ी हकीकत बता दी, और वो क्या है, इसमें से जरा सा गौर करवाना चाहती हूँ आपको इस जुमले पे, जिसको पढ़ने के बाद एकदम दिल हाथ में आ जाता है, और वो क्या है, वकजालिका जालना लिकुल्ली नबीयन अदुवन, नबियों के दुश्मनों की बात हुई है। तो याद रखिए, नबी जब भी किसी माशरे में भेजे जाते थे, आज नहीं थे, आज नहीं, हाँ आज आप कह सकते हैं कि नबी की बात आगे करने वाला दाईये दीन, मुबल्लिग, कोई उस्ताद, कोई आलम दीन जब अल्लाह के नबियों वाले काम करेगा, तो उसकी हैसियत माशरे में ऐसे होती है उस बंदों के साथ जिनको वो पैगाम देता है, जैसे डॉक्टर और मरीज। लिखिए, डॉक्टर के पास जब कोई मरीज आता है और मरीज कहता है कि चेक कीजिए, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, ये हो रहा है, अब डॉक्टर क्या करता है कि उसका चेकअप करता है सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको दवा रेकमेंड करता है, और फिर उसके बाद उसका इलाज करता है, और साथ कुछ परहेज देता है। ऐसे ही है ना, आमतौर पर आप देखिए कि डॉक्टर जब कोई ऐसा मामला करे तो मरीज जो सलीमुल फितरत है, जो सही सोच अकल रखता है, वो कहेगा जजाकल्लाह खैर, शुक्रिया कहेगा, उसकी फीस दे देगा, कहेगा बहुत शुक्रिया, उसकी बात को कान लगा के सुनेगा। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जो लोग डॉक्टर की जिस तरह कान लगा के नुस्खे को सुनते हैं ना, कभी इस तरह अपने उस्तादों की बात सुन रहे होते हैं तो आज पता नहीं चांद पे पहुंच चुके होते हैं। लोग उस्तादों की बात वैसे नहीं सुनते, वो तड़प नहीं होती, वो तलब नहीं होती, वो यकीन नहीं होता कि अच्छा नहीं नहीं ये गोली किधर खानी थी, अच्छा आधी खानी थी, पूरी खानी थी, अच्छा जरा फिर बताइएगा ऑरेंज जूस के साथ खानी थी कि दूध। अल्लाह वाले अगर आपको जिस दवा की खबर देते हैं लोगों, अपना अमल बदलो, तुम्हारे हालात खुद ही बदल जाएंगे। उस्ताद की बात हम सुनते हैं सिर्फ ये कि जितना हमारा दिल चाहे, जो हम चाहेंगे, जितना हम सुनेंगे, जितना हम कर सकते हैं, जो माशरा करेगा। उस्ताद की बात को आज के बाद अपने लिए गोल बना लीजिए, सिर्फ डॉक्टर की तरह, डॉक्टर की बात की तरह सुनने लगे। फिर परहेज भी करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं अब ये भी करना, तो वो तो बच जाएगा। इसके बरक्स अगर कोई पागल हो, नादान, दीवाना, डॉक्टर का मजाक उड़ाएगा, उससे नाराज होगा और अपने जैसे कुछ और पागलों के साथ जाकर बात करेगा, वो देखो वो फलाने मुझे ये कहा। और याद रखिए, दुनिया में बिगड़े से बिगड़े शख्स ने भी अपने हम ख्याल लोग जमा कर लिए। ये जब से मैंने मुसैलमा कज़्ज़ाब का किस्सा पढ़ा सीरत के वाक़ये के बाद अगला दौर, तब से मुझे यकीन आ गया कि दुनिया में मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसका नाम ही कज़्ज़ाब है, झूठा, उसको भी फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं। आप एक चैनल बनाएं, आपको बड़े फॉलोअर मिल जाएंगे। आप कोई एक प्लेटफॉर्म जमा करें, 10-15 आपको मिल जाएंगे। बात ये नहीं है, झूठों को भी मिलते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई नबी की मौजूदगी में 300 को काट के ले गया था, ये तो होता ही है। अब वो शख्स क्या करे, इकट्ठे करे लोग, एक जत्था बनाए, फिर डॉक्टर के खिलाफ एजिटेशन, मुजाहरे। बताइए इसकी अकल में किसी को कोई शक है कि ये बेवकूफ है? बस इस मिसाल को ले आइए इस आयत के ऊपर कि वकजालिका जालनाली कुल्ली नबीयिन अदुवन शयातीन अलिंसी वल जिन, तीन तरह के दुश्मनों में नबी भी घिर होता है। डॉक्टर को तो मरीज की बीमारी दिखाई जाती है, इसी तरह जब किसी मुआशरे में शिर्क का मर्ज फैलता था तो अल्लाह ताला वहां किसी एक नबी को भेजते थे, और ये असूल चलता आया हजरत नूह के दौर से, और फिर हजरत नूह के बाद वाले अदवार में, जो आज हम इस सूरत में पारे कैंट पे पढ़ेंगे, वहां बताऊंगी इंशाल्लाह कुछ चीजें। हर दौर में अल्लाह ने अंबिया कराम भेजे, रसूल भेजे, वो भी फिर वहां के लोगों का इलाज करते हैं, तो मुआशरा पोलराइज हो जाता है। लेकिन पोलराइजेशन क्या होती है, आप सभी जानते होंगे, मैग्नेट के साथ आप अब लोहे को रख दें तो पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट नजर आता है। जो सलीमुल फितरत लोग होते हैं, अबू बकर सिद्दीक जैसे, हजरत खदीजा जैसी, हजरत अबू बकर, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत सैद, फौरन कबूल कर लिया, अच्छा आपके पास वही है, शुक्र है अल्लाह का, हम आपको गवाही देते हैं। और इसी तरह चलते चलते इस काफिले में उमर भी आ गए और बाकी लोग आते गए। ये तो हैं वो सलीमुल फितरत लोग जो अल्लाह के नबी की इस दावत पे मक्का के इस एडवर्स हालात में तकरीबन 120 के करीब नंबर बन चुका था हिजरत मदीना तक। ये तो थे वो कि जिनको कहते हैं कि दिया सलाई दिखाने की देर है तो ये शम्मा रोशन हो गई। लेकिन उसी मुआशरे में कुछ बिगड़े हुए जिनके दिलों पे शैतान वही करता था, जिसमें सबसे पहले तो अबू लहब का नाम आएगा क्योंकि कुरान ने भी उसका नाम लिया कुरान पाक में, फिर अबू जहल भी है, फिर इसमें वलीद, शैबा, मुगीरा और इसी तरह बहुत सारे नाम थे। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने पहले वही काम किया जो एक पागल और दीवाना डॉक्टर के साथ करता है, गुस्सा किया, मजाक उड़ाया, मेक फन, मेक बिलीव, और इस तरह अल्लाह के नबी के खिलाफ प्रोपेगंडे किए, महाजराई की। हमें ये सब क्यों बताया जा रहा है? देखिए मैं अपने ऊपर लेके बात करूंगी क्योंकि इस वक्त मैं ही रिप्रेजेंट कर रही हूं इस वक्त पढ़ाने वालों को। आप सब तो माशाल्लाह सुनने वाले हैं, लेकिन आप में से भी जिस किसी को पढ़ाने का शौक है, दाई दीन बनने का शौक है, उस्ताद बनने का शौक है, उस्ताद का टाइटल लगवाने का शौक है, तो सोच के निकले। अल्लाह ताला इस आयत में दाई दीन को और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को बता रहा है कि अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि ये शोहरतों का सफर है और ये बड़ी इज्जतों का सफर है और लोग तुम्हारा हुक्का पानी उठाते हैं और तुम्हारे बैग उठाते हैं, तो यहीं से पलट जाओ। ये तो एक ऐसी दोधारी तलवार वाली जॉब है कि इसके ऊपर बंदा दो तरफ से पिसता, एक तरफ बंदों से और एक तरफ रब से, और तीसरी तरफ अंदर से अपना नफ्स, कहीं उजब आ गया तो मारे जाएंगे, कहीं लोग। शोहरत का फितना इतना बड़ा फितना है, जिन जो मशहूर लोग हैं जरा जाके तो पूछिए। बहुत साल पहले कहीं बचपन में एक जुमला किसी गुलुकारा या अदाकारा या फिल्म में काम करने वाली थी उनका पढ़ा था कि मेरा दिल करता है मैं कभी मुझे लोग तनहा छोड़ दें। बुरका पहन के वो लाहौर में अनारकली में गोलगप्पे खाने को पसंद करती थी क्योंकि मैं जहां जाती हूं लोग मेरे पीछे आते हैं। पब्लिक फिगर बन जाता है बंदा, पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है, लोग हक मनाते हैं, वो जागे वो सोए वो फाए, वो कहते नहीं आपको हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो याद रखिए, इसी तरह जब दीन का काम आप करें, जो कि इस वक्त हमारे पास अल्लाह की तौफीक से ये काम है, तो सोच लीजिए हमेशा कामयाबियां नहीं मिलती। कामयाबी को सोच कर अगर ये काम शुरू किया तो भी छोड़ दीजिए। इस रस्ते में दुश्मनियां, प्रोपेगंडे और बैकबाइटिंग, और आपको क्या किस महाज से गुजरना पड़ता है, ये कभी उनसे तो पूछिए जो इस रस्ते में आ चुके हैं। अल्लाह के नबी कामयाबियों के लिए काम नहीं करते थे। अब मुसअब बिन उमैर पहली जंग में खत्म हो गए, उन्होंने फतेह मक्का नहीं देखी, सुलह हुदैबिया नहीं देखी, तबुक नहीं देखी, लेकिन कामयाब हो गए। एक जुमला जम बना लीजिए, कामयाबी ना भी मिले, काम करने वाले तो कामयाब हो जाएंगे। आपने अच्छी नीयत से काम डाल दिया, हिस्सा डाल दिया, अपना अपनी स्किल डाल दी, अपनी एफर्ट डाल दी, अपना माल दे दिया, आपको अजर मिल गया, चाहे अब आपकी वो मेहनत कबूल हुई कि ना हुई। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के नबियों के साथ जो दुश्मनियां की जाती थी वो फिर दो तरह की हैं। लिखिए यहां जो दुश्मन की बात है, एक शैतान होते हैं नजर आने वाले दुश्मन, और एक ना नजर आने वाले। जो नहीं नजर आते उनको तो आप जिन कह दीजिए, उनको तो पीछे कर दें, वो तो हर बंदे के साथ लगा हुआ है, जिसमें नफ्स अम्मारा भी और जिसको कोई हमजाद भी कहता है। लेकिन जहां बात करूंगी वो जिन शायद दुश्मन जो नजर आते हैं, ये इंसानों में से होते हैं। शैतान इंसानों के रूप में आता है, ये यकीन दिलाता है कि मैं कुछ नहीं हूं, और वो आपके अपने इर्द गिर्द है। अब जब इस तारीफ को आप सुनते हैं तो परेशान होते हैं, कैसे ये अपनों के बीच में आते हैं, ये अपनों के रूप में आते हैं, मोहब्बतों के नाम पे। आपको कौन कौन सा रिश्ता ना इसमें दिखे, दिल पे हाथ पड़ जाता है। सवाल लिखिए कि कैसे पता चले कि इंसानों में कौन मेरा दुश्मन है, या इंसानों में कौन सा असल में शैतान है। तो हर वो इंसान जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ उकसाए आपको, जो गुनाहों को खूबसूरत बनाकर दिखाए, इसी तरह जो हक को मशकूक करके दिखाए, जो अल्लाह की फरमाबरदारी से आपको रोके, और अल्लाह की फरमाबरदारी का काम करने पे आपका मजाक उड़ाए, आपको अच्छे काम करने पे डांटे, बुरा कहे, और आपको डराए कि देखो शौहर दूसरी शादी कर लेंगे, देखो बच्चे घर से भाग जाएंगे, और देखो ये, तो मान लीजिए कि वो है इधर जिसका जिक्र है, कि जिनको अल्लाह ने फरमा दिया अदु वंशयातीन अलिन सिवल जिन। इस तारीफ की रोशनी में अब अगर आप देख चुके हैं तो यकीनन आप परेशान होंगे। इसलिए इसका इलाज क्या है, हम खुद भी संजीदा हो जाएं, सीरियस हो जाएं, अल्लाह मदद देता है, अल्लाह इर्द गिर्द वालों के दिलों में खैर डाल देता है हम सब के लिए। दुआ करती हूँ कि ये सारी बातें अल्लाह मेरे और आपके लिए हक में हुज्जत बन जाए, हमारे खिलाफ ना बने। आगे देखिए आयत 114 से 115 टॉपिक है, इस्लाम दीन सिर्फ और अदल है। अफ़ग़ैर अल्लाह यब्तगी हकमा, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं, हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है। इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि यह आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। बस आप शुबा करने वालों में न हो जाइए। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, और इसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ये है बैलेंस रिलीजन। इस पे आप कहें कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मैं इस किताब को पढ़कर इस बात का तो यकीन रखती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे सच्चे दीन से जोड़ा। आप देखिए क्या मुसलमान है ना, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया, हमारी तो फितरत के अंदर मोहब्बत भरी हुई है ना इस बात की कि हम इस्लाम को अच्छा कहें। लेकिन आज दुनिया बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर इस इस्लाम का निजाम मांग रही है, लेकिन हमें हाथों में मिला हुआ है सिद्क है, बैलेंस रिलीजन है। माँ बहन बेटी हर एक का फर्क है, रिश्तों की तमीज है, हकूक और फराइज देख लीजिए, हर मामले में तवाजुन है। अल्लाह सुबहाना तआला यहाँ यही बता रहे हैं कि आपने इन चीजों को लेकर अपनी जिंदगी में इस तरह से निकलना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। प्राउड टू बी अ मुस्लिम, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ मुस्लिम, आई एम नॉट एन एम्बेरेस्ड मुस्लिम, और इस तरह के अपने आप को यकीन दिलाइए कि हमने अपने रब को राजी करना है। फिर इसके बाद आयत 116 से 117 टॉपिक है, अक्सरियत सीधी राह से भटका देती है। और आज तो हम कहते हैं मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी, तो आप इसका नाम लिख लीजिए मेजॉरिटी इज नॉट द अथॉरिटी। कैसे? ये आपको मुझे अंदाजा होगा इस आयत को पढ़ के। वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लू कन सबीलिल्लाह, और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल क्यासी बातें करते हैं। आपका दिल मान रहा कि ये बात सच है? 100% सच है। दुनिया आपको किधर लेके जा रही है? शैतान की तरफ। ये शैतानी वही है जो अक्सर लोगों के दिलों पे होती है। बिल यकीन आपका रब इनको खूब जानता है जिसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो इनको भी खूब जानता है जिसकी राह पर चलते हैं। तो क्या पता चला? चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की, ये स्लोगन नहीं अपनाना। जैसा देश वैसा भेष, ये नहीं अपनाना। अल्लाह के हुक्मों पे रहते हुए अल्लाह की मर्जी को जानना है। और कलीलन का लफ्ज तो कुरान में अक्सर आप देख ही लेते हैं, शुक्रगुजारों के साथ, फरमाबरदारों के साथ, और उन लोगों के साथ आता है कि जो हकीकत में वाकई अल्लाह सुबहाना ताला के पसंदीदा बंदे हैं। तो थोड़े रह लें। एक शख्स से दुआ कर रहे थे और दुआ में कह रहे थे अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे। किसी देखने सुनने वाले ने पूछा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो कहा तुमने नहीं पढ़ा कलीलों में निवादी या शुकुर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे मालिक तुम मुझे शुक्र गुजार बना दे। आगे देखिए आयत 118 से 120। हवा नहीं हुदा, यानी ख्वाहिशों के पीछे चलने की बजाय हुदन यानी हिदायत के पीछे चलेंगे, वरना क्या होगा? शैतान की वही होगी। हवा के पीछे चलने वालों पर शैतान इल्हाम करता है चीजें, और दूसरे पर अल्लाह ताला का कलाम फिर उसको बताता है कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। मक्का वालों की एक बार चीज की तरफ इशारा किया गया, वमा लकुम अल्लाह ताकुलु मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाही अलैहि। इस आयत को अगर आप देखें तो फकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाही अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मोमिनीन से ये बात शुरू होती है। बस जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए इसमें से खाओ अगर तुम इसके अहकाम पर ईमान रखते हो। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवरों में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी जिनको तुम पर हराम किया गया है, मगर वो भी जब तुम्हें सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो, बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनको इनके किए की सजा अनकरीब मिलेगी। ये थी ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल, शैतान की वही। मक्का वाले एक जुमला बोलते थे कि मोहम्मद तुम कैसी बातें में बताते हो कि जिसको खुदा मारे उसको तो ना खाओ और जिसको तुम खुद ज़िबा कर लो उसको खा लो, यानी मैता या मुर्दार की उन्होंने ये तारीफ अपने यहाँ रखी थी। तो इस पे अल्लाह सुबहान ताला ने ये शोशा उनका रखा। आज भी लोग इसी किस्म के खूबसूरत जुमले बोलकर लोगों को इस्लाम से दूर करते हैं। आपको मुझे बस इस पे गौर करना है। जाहरी गुनाह छोड़िए, चलिए अपनी जिंदगी में जरा सा एक नजर डालिए, कौन से गुनाह हैं जो मैं जाहिर में करती हूँ दूसरों को भी दिखते हैं। यहाँ बैठिए रमजान की इन घड़ियों में, रोजे की इस हालत में, कुरान की इस पाकीजा महफिल में बैठकर कहिए कि अल्लाह मैं इसको छोड़ने की नियत करती हूँ। इरादा कीजिए कोई एक नेकी, कोई एक गुना जो सबको दिखता है, ये दिखने वाला गुना है। और आप सब जानते हैं दिखने वाले गुना वही होते हैं जो जाहिर से मुतल्लिक हैं, हमारे हाल हुलिये से। कोई ऐसा कपड़ा पहनना छोड़िए जो बुरा है, अपने आप को छुपाइए। आज कोरोना की वजह से चेहरे छुप गए, अल्लाह ने इतना प्यारा हेड स्टार्ट दे दिया। अल्लाह से माफिया मांगिए कि अल्लाह कोरोना की मुसीबत से जान छुड़ा, हम अपने चेहरों को छुपाएंगे। हम गैर औरतों और गैर मर्दों से शेक हैंड नहीं करते, आज हम नहीं करेंगे। कोई ऐसा गुनाह छोड़ने की नियत कीजिए और बातनी गुनाह की भी नियत कीजिए। यहाँ बैठकर अगर किसी के बारे में दिल में कोई गिल आ चुका है, दिल मैला है, खट्टा हो गया, तो उसको फेंकिए, क्योंकि दिल साफ करने बैठे हैं। तमहीसे कुलूब है ये, रिक्कते कल्बी है ये। आप और मैं दिल गंदा लेकर अगर वापस इस रमजान से बाहर निकल गए तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि एक तेज बारिश पड़ी आपके दिलों पे, कुछ दिन दिल धुले और दोबारा अंदर की गंदगियां अंदर ही रह गई। और फिर बिला शुबा जो गुनाह कर रहे हैं इसकी सजा तो मिलेगी, इसका यकीन रखिए। तो 120 आयत में अलकल्बुल आसिम की बात है, गुनाहगार दिल। व जरू जाहिर अलिस्मी व बातिनहु, कौन सा दिल गुनाहगार दिल होता है? जो सिराते मुस्तकीम से दूर होता है। आप इतना सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगकर रोज यहां बैठते हैं और पूरे पारे में 10-12 दफा हम इसका तस्करा करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस सिरात मुस्तकीम से दूर ना करना। फिर गुनाहों का मस्कन इंसान का दिल बन जाता है और खराबियों का मस्कन इंसान के बातनी जज्बात होते हैं। हम वो लोग जिनके साथ दिन रात हमारा वास्ता होता है, हम उनके भी खिलाफ बातें करते हैं, हम उनके बारे में भी गलत सोचते हैं, हम उस्तादों के बारे में गलत सोचते हैं, हम अपने प्यारे जान से प्यारे शागिर्दों के बारे में गलत सोचने लगते हैं, हम वो प्यारे अंसारुल्लाह जिनके बगैर हमारा एक दिन न चले, हम टीम वर्क के बगैर काम न कर सके, हमें वो बुरे लगते हैं। वो लोग जो दिन रात हमारी मदद करते हैं, हमारे एक इशारे पे वो खड़े हो जाते हैं, हम उनके बारे में गलत सोचने लगे तो दिल गंदा हो जाएगा। दिल को साफ कीजिए, आगे चलना है तो दिल को साफ करना पड़ेगा। फिर आगे आयत 121, हलाल और हराम की वईद। वला ताकुलु मिम्मा लम युस्किर, यानी वला ताकुलु मिम्मा लम युस्किर इस्मुल्लाही अलैहि, मक्का वालों के उसी अमल का जिक्र है। और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, और ये काम नाफरमानी का है, और यकीनन अल्लाह ताला अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जिदाल करें, यकीनन शैतीन अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जिदाल करें, और अगर तुम इन लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। नोट किया आपने, शैतान की वही, शैतान का इल्हाम हक वालों के खिलाफ दिलों में बातिल नजरियात के लिए ऐसे ही जज्बे शैतीन अपने लोगों में डाल देते हैं, इसलिए इससे पनाह मांगने की जरूरत है। बड़ी खूबसूरत आयात है आगे 122 से 124। लिखिए, कुरान बसीरत का इल्म देता है। कैसे? एक शख्स को जहन में रखिए, चाहे अपने आप को ही रख लीजिए, और फिर इसको सुनिए ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। अवमन का नमैतन फाहयी नाहू व जाल नालहू नूर यमशी बिही फिन्नास। ऐसा शख्स, बिल्कुल अपनी वो कैफियत रखिए जब आप अभी हिदायत की तरफ नहीं आए थे, किताब हिदायत नहीं खुली थी, सिर्फ एक तलब जागी थी आपके दिल में, अपनी वो जिंदगी जिसको आप कह सकते हैं कि जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, उसको जहन में लाइए। जब आप थे तो मुसलमान माँ बाप के ही बच्चे, आपका भी नाम किसी नबी के नाम से या किसी सहाबिया के नाम से था, लेकिन अभी जिंदगी नहीं थी दिल में, दिल मुर्दा था। उस कैफियत को अल्लाह ने यहां मुर्दगी कहा है। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने इसको जिंदा कर दिया, यानी कुरान दे दिया, और हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। कैसा शख्स इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता? इसी तरह काफिरों को इनके अमाल खुशनुमा मालूम होते हैं, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बनाया ताकि वो लोग वहां फरेब करें, और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और इनको जरा खबर नहीं। मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे फिर अपनी एक बहुत ही अजीज साथी याद आ गई, उन्होंने अपनी एक शेयरिंग भेजी आप सबके लिए। आज ऐसा करेंगे कि जब पारा पूरा होता है तो एंड पे जो हमारा टाइम होता है डिस्कशन का, मैं कोशिश करूंगी वक्त पे ही पूरा हो जाए तो आपको उनकी शेयरिंग सुनाते हैं, और वो चाहती हैं कि सुनाएं ताकि आपको उनका वो सफर जो अंधेरों से रोशनियों की तरफ आया वो उनका सदका जारिया बने। इंशाल्लाह आपको सुनाते हैं आज एंड पे, अल्लाह ने चाहा तो, और अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे। और जब इनको कोई आयत पहुंचती है तो यूं कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस मौके को तो अल्लाह ताला ही खूब जानता है कि कहां वो पैगंबरी रखे अपनी, यानी किससे अल्लाह ने अपनी बात कहलवानी है, ये अल्लाह का फैसला है। और इस आयत पे तो रोने को दिल करता है, हाईलाइट करना है तो कर लीजिए, अल्लाह आलम खैसु या जलूरी सालता, अल्लाह को खूब पता है मैंने किससे अपना पैगाम दिलवाना है। कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में कि कभी अल्लाह मुझे भी इस रास्ते में चुनेगा, अल्लाह मुझसे ही खिदमत लेगा। ये तो रोते ही रहें, सर सजदों में रखकर आंसू बहाते ही रहें तो ये काम रहते हैं, वरना अल्लाह के पास बड़े हैं। आप रूठिए तो सही, अल्लाह आपको मनाने नहीं भेजेगा किसी को, तुम रूठे हम छूटे वाली कैफियत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते थे कि गरीब मक्का है, यतीम है, कोई बहुत ज्यादा इसका दौलतमंदा मन घराने से ताल्लुक भी नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं तुम क्यों एतराज करते हो, मुझे पता है मोहम्मद को मैंने क्यों चुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन करीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुंचकर जिल्लत पहुंचेगी और इनकी शरारतों के मुकाबले में सजाए सख्त, अल्लाह ना करे कैसी सख्त सजा हमें मिले या किसी भी तरह की मिले। फिर आगे आयत 125 से 126, बहुत ही खूबसूरत आयत, आपकी बातें हैं जो रोज सुनने के लिए बैठ जाते हैं, हर मुश्किल पे काबू पाकर अपने आप को फोकस करते हैं, और वो कौन लोग जिनका सीना खुल जाए। दुआ भी कीजिए रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। और आप हिदायत के तालिब बनकर अगर 7 पारे सुन चुके हैं और अब 8वें पारे पे हैं तो ये आप भी हैं, क्योंकि अब अल्लाह ने आपका सीना खोलना शुरू कर दिया। ओपन हार्ट सर्जरी है ये, कैसे? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ। यहाँ देखिएगा इरादा अल्लाह का है, अल्लाह का पहले भी था, आपने अब किया तो अल्लाह ने आपके लिए किताब खोल दी। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहे, बोलिए ऐ अल्लाह मुझे रास्ते पर डाल दे, तड़प के मांगिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो क्या करता है, इसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह रखना चाहता है, जिसको बेराह रखना चाहता है इसके सीने को बहुत तंग और घुटा हुआ कर देता है, जैसे कोई आसमान पर चढ़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला ईमान न लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। हाईलाइट कीजिए, यह है नापाक सीने जिस पर शैतान की वही होती है, उसका इल्हाम होता है, और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ साफ बयान कर दिया है। तो देखिएगा जरा किसका सीना खुलता है, और जब हक और हिदायत की बातें कबूल करने के लिए सीना खुल जाए तो इससे क्या मुराद है, फ्लो चार्ट है आपके सामने, नफ्स की तहारत हासिल होती है, तकब्बुर और हसद से अल्लाह से बंदे को पाक कर देता है, और आबाई अंधी तकलीद से बंदा दूर हो जाता है। लाख एक ही बात 10 दफा सुनी थी, बचपन से देखा नानी को, दादी को, फिर सास को, फिर उसको, लेकिन जब हक बात सामने आ गई तो फिर इंसान उस पर लब्बैक कहता है। आप चेक कीजिए कितना सीना खुला है, कितना हार्ट ओपन हुआ है। अब इसका क्राइटेरियन आपका मेरा कैसे पता चले, नेकियां आसान कितनी हो रही हैं और गुनाह मुश्किल कितने हो रहे हैं, यहां बैठने में मजा कितना आ रहा है और नींद कितनी आ रही है और बोझल कितना रह रहा है, और कैसे दिल खुलता ही जा रहा है कि अल्लाह मैं बस अब कुरान की रहनुमाई में अमल करूंगी, ना कि अपने बाप दादा के नाम पर गलत कामों को करके उनके लिए भी बुरा सदका जारिया बनूंगी। और अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोल दे। सीना खुल गया और क्या चाहिए, ये सीने के खुलने की दुआएं करने के लिए हम सब यहां बैठते हैं। तो आप सब अपने दिलों का इलाज करवाना चाहते हैं तो सदर, यहां देखिए सदर का लफ्ज आया, ये नोट कर लीजिए, पहली दफा आया कुरान में। सदर कहते हैं दिल के इर्द गिर्द का केज, जैसे रिब्स होती है ना, पसलियां, पसलियों के अंदर दिल है, या अगर आपने लालटेन देखी हो तो लालटेन जो है ना उसके बाहर का शीशा। यहां बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं रोक लूंगी और इंशाल्लाह आखिरी दिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी तफसील से, यहां इशारा कर देती हूं कि शैतान को सिर्फ हमारे सदर तक आने की इजाजत है, कल्ब में नहीं आ सकता। वो उस चोर की तरह बाउंड्री वॉल से अंदर आकर रास्ता अंदर आने का ढूंढता रहता है। कोठी जा रही है अपनी, जरा नॉर्वे की हवेली या वो खारिया की हवेली को जहन में लाइए, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, अंदर का ताला लगा हुआ है। जब तक अंदर ताला लगा रहे शैतान सदर में घूमता रहता है। वो सदर एक कराची में भी सदर है, बड़ा बहुत ही कंजस्टेड होता है, जब भी गए यही कहकर निकले कि आइंदा कभी इधर नहीं आना। तो सीने के बाहर से सीना है ये, बस शैतान का इधर तक दाखला है, आगे तो फिर आप खुद उसको वार्म वेलकम कहते हैं, दरवाजे खोलते हैं तो वो आता है, वरना वो आमतौर पर आ नहीं सकता। खिड़की कोई खुली हो तो झांकता है, कोई दरवाजा खुला हो तो झांकता है। हम इस सफर में अपने सारे ऐसे चोर दरवाजे बंद करने वाले हैं कि जिससे शैतान को हमारे अंदर आने की तौफीक हो। आगे देखिए आयत 127 से 129, जन्नत सलामती का घर है। लहुम दारुस्सलामीन दरब्बिहिम, अल्लाह यहां भी सलामतियां दे, कोरोना वायरस से सलामत कर दे, हर शर से, हर फितने से, हर शैतानी वही से, हर बुरे नजरिए से हमारी नस्लों को पाक कर दे। इन लोगों के वास्ते इनके रब के पास सलामती का घर है, और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है इनके आमाल की वजह से। नोट कीजिए, शक्लों सूरतों की वजह से नहीं अल्लाह मोहब्बत रखता, आमाल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो अल्लाह में अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। वह यौम यख्शुरुहुम जमीया, और जिस रोज अल्लाह ताला तमाम मखलूक को जमा करेगा, कहेगा ए जमात जिन्नात की, तुमने इंसानों में से बहुत अपना लिए थे। जो इंसान इनके साथ ताल्लुक रखने वाले थे वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम में से एक ने दूसरे से फायदा हासिल कर लिया। ज़ुख़रुफ़ल क़ौली, गुरूरा को याद कीजिए। और हम अपनी इस मुअय्यन मियाद तक आ पहुंचे जो तूने जो हमारे लिए मुअय्यन फरमाई। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम सब का ठिकाना दोज़ख़ है जिसमें हमेशा रहोगे। हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है, बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला बड़ा इल्म वाला है। और इसी तरह हम बास कुफार को बास के करीब रखेंगे इनके अमाल के सबब। नोट कीजिए, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा। वो कहते ना कि लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर, या एक तरह के परिंदे एक फ्लॉक में ही उड़ते हैं। तो दुनिया में जिन लोगों के काम आपको अच्छे लगते हैं, अल्लाह वहां जाकर आपको बिल्कुल आपकी कंपनी से दूर नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको उनके साथ ही रखेगा। दुआ कीजिए, अल्लाह हमें बुरी कंपनी से बचा दे, बुरे लोगों से, बुरी सोहबत से अल्लाह हमारी नस्लों को निकाल दे। अल्लाह जिनके बच्चे बुरी सोहबत में जाकर एथियस्ट हो गए, गैंगस्टर बन गए, ड्रग एडिक्टेड हो गए, अल्लाह उनको निकाल दे। शराब के रसिया हो गए, कबाब के रसिया हो गए, उनके अंदर गंदगी आने लगी, जिना और उस बुराइयों में इंडल्ज हो गए, अल्लाह उन सारे मुसलमान बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। और दीन की तरफ आना अल्लाह ताला आसान कर दे हम सबका। आयत 130 से 131, क्यामत में अपने खिलाफ गवाहियां कैसे हैं जरा सा देखिएगा। या माशरुल जिन्न वल इंस यलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, कैसे अल्लाह ताला ने देखिए नाम लेके पुकारा। खिताब का सीखा होता है या का, तो फरमाया ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने पास ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस आज के दिन की खबर देते। वो सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनियावी जिंदगी ने भूल में डाले रखा। और ये लोग इकरार करने वाले होंगे कि वो काफिर थे। इस वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफर के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि इस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों। नोट कीजिए, बेखबरी में अल्लाह नहीं पकड़ता। क्या हमें खबर हो चुकी है? तो फिर इस खबर के बाद हम अल्लाह को हुज्जत दे रहे हैं कि अब आप हमें पकड़ सकते हैं। और बात यही है, जितनी ज्यादा आप आज अपनी जिंदगी में इस चीज की फिक्र करेंगे कि मैंने अल्लाह के अजाबों का शिकार नहीं होना, उतना अल्लाह सुबहान तआला वहां भी आपको बचाएगा। आगे आयत 132 से 135, अमल के मुताबिक दरजात मिलेंगे। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, अल्लाह करे कि हमारे अमल खूबसूरत हो जाएं, हम बेहतरीन तरीके से आमाल करने वाले बन जाएं, और हर एक को इसके अमाल के सबब दर्जे मिलेंगे। और आपका रब इनके अमाल से बेखबर नहीं है, और आपका रब बिल्कुल गनी है, रहमत वाला। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद करे, जैसा कि तुमको एक दूसरे की कौम की नस्ल से पैदा किया है। जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली चीज है और तुम आजिज नहीं कर सकते। क्या है वो चीज? क़यामत या फिर अल्लाह का अजाब। आज यहां अपने दर्जे देखिए। देखिए वो सीढ़ी का इमेज सामने ले आइए जो आपको रबी या कल्बी के डे टू से दिया गया। और मुझे उम्मीद है कि आप हर दिन अपने आप को चेक करते हैं कि मैं किस स्टेज पे पहुंच चुकी हूं। दर्जे आपके हक में है। हिदायत का एक सफर ऐसा शुरू होता है, हर एक स्टेप पे खड़ा बंदा अगले स्टेप पे जाने के लिए बेचैन होता है। तरक्की रुक जाएगी अगर आपकी पिछले साल की हिदायत से अब अगले साल की हिदायत ना बढ़ी। आप DQ 20 में भी थे, आज आप DQ 21 में भी हैं। कुछ नेकियां बढ़ाइए, कुछ बुराइयां छोड़िए, कुछ अमल के खूबसूरत फूल लगाइए ताकि आपके दर्जे बुलंद हो। देखिए खास उम्र तक हमारी ग्रोथ होती है ना, जिस्मानी तौर पर बच्चा बड़ा होता है, दिनों में पलता है, कुछ दिन बाद देखे तो आपको बहुत ही बड़ा लगता है ना। फिर एक जगह आकर हमारा नाक रुक जाता है, कान रुक जाते हैं, लेकिन कद बढ़ता रहता है। फिर 15-16 साल की उम्र के बाद कद भी बढ़ता खत्म हो जाता है ना। एक वक्त होता है, हिदायत के आमाल के दर्जों का वक्त है। अभी कर लीजिए। जिस दिन जिस्म रूह का बंद खुल गया उस दिन ये दर्जे खत्म हो जाएंगे। हसरत होगी, अफसोस होगा। आप किसी ऐसे शख्स को सोचिए जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इमेजिनेशन में लाइए, बिल्कुल आप उसको बर्दाश्त नहीं करते। होता है ऐसा, कुछ लोग होते हैं, कोई ना कोई हिकद और कह लीजिए कि गल पले ही होते हैं रिश्तों में कहीं। तसव्वुर में लाइए कि आपकी वो रिश्तेदार, वो आपकी ससुराली, वो आपकी कोई ऐसी से साथी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए और आप नीचे हैं जन्नत नईम में, आप जन्नत मावा में हैं। और हदीस में आता है कि जन्नत में जन्नतियों को अपने से ऊपर वाले लोग, जो ऊपर के दर्जों में होंगे ना, वैसे दिखेंगे जैसे तुम्हें जमीन में आसमान पे सितारे दिखते हैं। क्या दिल की हालत होगी, अफसोस होगा, हाय मैं भी कुछ उसकी तरह मेहनत करती, मैं तो उसको बावली कहती रही, मैं तो उसको बेवकूफ ही समझती रही और हर बात में अड़ी करने वाली और मानती नहीं और दीन दीन पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हर जगह। तो उस वक्त दिल में एक हूक होगी ना कि कभी एक मौका मिले। और आगे आप पढ़ेंगे इसी सूरत में भी आएगा और आगे बहुत जगह है, वलौ अन्न लना करतन फन तबर्रो मिन्हुम, पीछे पढ़ के आए हैं सूरह बकरा में हम, एक मौका दे और अल्लाह देगा ना, फिर आके हम शॉपिंगों में लग जाएंगे, हमने फिर भी कुछ नहीं करना। लेकिन वहां जो अफसोस होना है, आज इसकी फिक्र कीजिए, क्या है थोड़ा सा तो कर लिए, थोड़ा और कीजिए। आप देखिए ना, हिम्मत बनाइए, अगर आप बिल्कुल नए नए हैं तो अपने आप को टेम किया करें, कोई बात थोड़ा सा और, मैं कुछ और काम करूं, कुछ और करूं। अच्छा नमाज तो पढ़ती हूँ, वक्त पे पढ़ूंगी, अच्छा मैं पढ़ता तो हूँ, अब मैं जमात से पढ़ूंगा, अच्छा घर में तो जमात कराता हूँ, मस्जिद में करूंगा, अच्छा करीब की मस्जिद में जाता हूँ लेकिन जरा थोड़ा दूर चलता हूँ, मेरे कदमों के निशान गिने दें, ये है मिम्मा मिलू, जो आज करेंगे कल वही भरेंगे। कैसे रिवर्ट हैं, एक रिवर्ट का जिक्र मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि कैसे वो कहते हैं कि मैंने सबसे मुश्किल जो चीज लगी इस्लाम कबूल करने के बाद वो फजर की नमाज थी। तो अपने उठाने के लिए वो अलार्म लगाते थे, मोहम्मद असम का नाम आप जानते होंगे, 19 सेंचुरी के शुरू की शख्सियत है, जियू से मुस्लिम हुए थे, बहुत कम मिसालें इसकी। और वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को नमाज का आदी किया, पहले एक अलार्म लगाता सरहाने के पास होता, वो अलार्म बोलता, मैं बंद करके सो जाता लेकिन थोड़ी सी आंख तो खुल चुकी होती, फिर 15 मिनट के बाद का एक अलार्म जरा सा दूर उठाता कि बिस्तर से उठना पड़ता, फिर वो भी बंद करके सो जाता, फिर तीसरा अलार्म मैं वॉशरूम के बिल्कुल पास रखता और तब तक फिर दो तमहीदे तो बन चुकी होती, तो जब वॉशरूम तक आता तो फिर कहता चलो मैं वॉशरूम यूज करूं। और इस तरह मैंने फजर की आदत डाली। क्या आप अपने बच्चों को और खुद को ऐसी आदत नहीं डाल सकते? और आगे देखिए निजात किसके लिए, आयत 135, कुल या कौम मलू अला मकानतिकुम, आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरी कौम तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूं, बस अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है। क्या मालूम हो जाता है कि सालम का अंजाम कार किसके लिए नाफे होगा? ये यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह न होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए निजात के रास्ते आसान कर दे। आगे आयत 136 में कुछ बुरे फैसले हैं जो शैतान की वही की रोशनी में मक्का के लोग करते थे, हलाल हराम के कुछ ऐसे अजीबो गरीब नुस्खे उन्होंने इख्तियार किए जिसका जिक्र किया गया। वजअलुलिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अनाम, और अल्लाह ताला ने तो जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं इन लोगों ने इनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया और खुद कहते हैं कि ये तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का है, फिर जो चीज इनके माबूदों की होती वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचती और जो चीज अल्लाह की होती वो इनके माबूदों की तरफ पहुंच जाती। क्या बुरा फैसला है जो ये कर रहे हैं? और ये फैसले किसके कहने पे करते हैं लोग? शैतान की, के वही की रोशनी में, उसके इल्हाम पे। कि आज हमारे पास ऐसी कोई मिसाल है? मक्का वालों ने अपनी खेतियों के तीन हिस्से किए होते थे, एक हिस्सा खुद इस्तेमाल करते खाना पानी जो भी अनाज आता, और यही चीज उनकी हर मामले में थी, भेड़ बकरियां और जानवरों को पालते हुए। दूसरे हिस्से की जो ग्रोथ होती थी उसको वो अल्लाह के नाम पे देते कि चलो कुछ तो अल्लाह के लिए भी करें, कुछ तो क्यों करें भाई, सब कुछ क्यों ना करें? वो जब आपको सब कुछ देता है तो क्या आप सब कुछ उसके लिए नहीं करेंगे? और तीसरा जो हिस्सा था वो अपने बुतों के नाम पे रखते कि उसका प्रॉफिट उधर शेयर कर देंगे। आमतौर पर तो मामला चलता ही रहता, कभी कभी ऐसा होता कि उस खेती पे जिसके अंदर अल्लाह का हिस्सा रखा हुआ था फसल को कीड़ा लग जाता तो फसल ना आती तो नफा ना होता, कहते फिर अब हम क्या करें, जब आया ही नहीं तो हम अल्लाह को क्या दे, कुछ ना देते। किसी अगले साल में उस खेती में जिधर बुतों का हिस्सा था वहां फसल ना आती, अब क्या होता? अब वो होता जो आज भी होता। नहीं 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 नहीं, ये नाराज हो जाएंगे, फिर ये नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? तो वो जो अल्लाह के हिस्से का हिस्सा था पकड़ के इधर दे देते कि इनके नाम पे, है ना अहमकाना बात। लिखिए कि आज हम ये नहीं करते। जब मेहमान आते हैं तो जद किस पे पड़ती है? नमाज लेट होती है या खाना पकता रहता है? जब माल कम होता है तो हम जो थोड़ा बहुत अल्लाह के रस्ते में कुछ देते लेते हैं वो भी छोड़ के बैठ जाते हैं कि अब हालात तंग हैं, कोरोना ने तो वैसे ही बहुत ही हाथ पांव बांध दिए। क्या आज हमारा भी अल्लाह के साथ ये सौतेल पने का सलूक नहीं है? अल्लाह हमारी हिदायत का जरिया बना दे इन बातों को। आगे 137 से 140, कत्ले औलाद, एबॉर्शन किसी नाम पे भी हराम है, शैतान की वही है ये, ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौली ग़ुरूरा है, दो बच्चे खुशहाल कराना ये भी गुनाह है। और याद रखिए कि कुरान पाक में तीन चार मुख्तलिफ मुकामात, जिसमें से अभी यहां आ रहा है, आगे दूसरी जगह आएगा और फिर तीसरी जगह, तीन वजूहात पे मक्का वाले अपनी औलादों को कत्ल करते थे, उसको जहन में रखते हुए सुनिए, फिर बताती हूँ आपको। आयत 137 से 140, वकजालिक ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन कत्ल औलादिहिम, और इसी तरह से बहुत सारे मुशरिकीन के ख्याल में इनके माबूदों ने इनकी औलाद के कत्ल करने को मुस्तहसन यानी काबिले तारीफ बना रखा है, ताकि वो इनको बर्बाद करें और ताकि इनके दीन को इन पर मुश्तबे कर दें, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये काम ऐसा ना करते। तो आप इनको और जो कुछ गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। और ये अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये मवेशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज नहीं, इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय इनके जिनको हम चाहें, और मवेशी हैं जिन पर सवारी या बारबरदारी हराम कर दी गई, और मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, महज अल्लाह ताला पर इस तरह यानी झूठ बांधने के तौर पर। अभी अल्लाह ताला इनको इस झूठ बांधने की सजा दिए देता है। और वो कहते हैं कि जो चीज इन मवेशियों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा है यानी बच्चा माँ के पेट में मर गया तो इसमें सब बराबर है। ये देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस पे कोई बात नहीं करता। अभी अल्लाह इनको इनकी गलत बयानी की सजा दिए देता है, और ये सारी शैतान की वही थी इनके दिलों पर जो होती थी। बिलाशुबा वो हिकमत वाला और बड़ा इल्म वाला है। वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बिला हमाकत बिला किसी सनत के कत्ल कर डाला, और जो चीजें इनको अल्लाह ने खाने पीने के लिए दी थी इनको हराम कर दिया यानी इनको हराम करार दे दिया। कैसे करते थे ये सब कुछ? थोड़ा सा इसको मैं तर्जमे को पीछे लेती हूँ। वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बिला हमाकत बिला किसी सनत के कत्ल कर डाला, और जो चीजें इनको अल्लाह ने इनके खाने पीने के लिए दी थी इनको हराम कर दिया महज अल्लाह पर झूठ बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं हुए। ये थी वो बिदात जो मक्का वालों ने गढ़ी हुई थी। इसमें दो बातें आपने देखी, एक तो कत्ले औलाद, तो औलाद की कत्ल की सूरतों में याद रखिए कि बुतों के नाम पर भेंट चढ़ाते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, और ये रस्म तो हजरत उमर फारूक के दौर तक मौजूद थी जब हर साल दरियाए नील में एक खूबसूरत लड़की को दुल्हन बनाकर डालने की रस्म का खात्मा न किया गया। और ये चीज आज भी आपको दिखती है बुजुर्गों के नाम पे बुतों के नाम पे। आज अपने मुसलमानों में इसकी एक सूरत आपको दिखती है, फलां कब्र पे जाके बच्चे को छोड़ आऊंगी, क्योंकि बच्चे नहीं होते, अगर हो गए तो पीरां देता है तो पीरों को जाके दे आऊंगी। सब खुराफात हैं। आज के इस पढ़े लिखे माशरे में इस दौर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा मामला करना गलत है। यहाँ एक जुमला बोल देती हूँ कि वो तो अपने बुतों के नाम पर औलादों को भेंट करते थे, हम तो आज अपने अल्लाह के नाम पे बच्चों को डिवोट ना कर सके। बीबी हन्ना की मिसाल पीछे पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, तो क्या हम वाकई इस चीज को देखें कि आज हमने अपने बच्चों को वो बुतों पे तो नहीं भेंट चढ़ाया लेकिन कुछ चीजों के सामने बैठे नहीं रहते? तसव्वुरे जाना किए हुए कैसे आज फिक्शन के नाम पे और ऐसी चीजों के ऊपर अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीजें दिखा दी कि हमने इन सारी चीजों को अपने ऊपर हम लेके सकते हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी। तो क्या पता चला कि इस चीज को जो हमने इस चीज के अंदर रखना है अपने बच्चों को, गलत चीजों के लिए, फिक्शन के लिए मत बिठाइए, मत बैठिए, क्योंकि आप देखिए कि वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज ब्राहे हमाकत बिला किसी सनद के कत्ल कर डाला। आज हम अपने बच्चों के हाथों में गैजेट नहीं दे देते, बताइए क्या हम वाकई अपने बच्चों को खुद पैसों से खरीद के वो चीजें नहीं दे देते कि जिन चीजों को वो लेकर फिर नमाजों से भी वाकाफिल हैं और दूसरी चीजों से। फिर दूसरी बात देखिए कि इसमें जो बांट है इनकी कि अपने तौर पे इन्होंने मन गढ़ंत बातें की, तो क्या आज हमारे माशरे में ऐसी कोई चीजें हैं? ये औरत ना खाए, ये मर्द ना खाए, ये फलां रस्म है, ये कुंडे हैं, ये औरतों की है, ये 10 बीवियों की कहानी है। जहां कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में है, बस उसका रेफरेंस चेक कर लीजिए कि अल्लाह के नबी या सहाबा में से किसने इसको किया था, ताकि जो काम कीजिए अल्लाह के हुक्म से वो कीजिए कि जो काबिल कबूल भी हो। फिर आगे देखिए कि आयत नंबर 141 से 144 अल्लाह ताला की कुछ निशानियों का तज़किरा है। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिम मारूशात मारूशात वगैरह मारूशात, ये सब उनकी बिदात और उनकी वो खराबियां हैं जो कि उन्होंने अपने नाम पे, बाप दादा के नाम पे कुछ रसूमात को दीन बना लिया हुआ था और कुछ साफ के इलाके जोड़ जाड़ कर एक अधूरा सा दीन बनाया था। अल्लाह कहते हैं उनको छोड़ो, देखो तुम्हारे रब ने क्या बनाया, और वही है जिसने बागात पैदा किए, वो भी जो छतरियों पर चढ़ाए जाते हैं और वो भी जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीजें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, और जैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबे भी होते हैं और एक दूसरे के मुशाबे नहीं भी होते, और इनके फलों में खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक वाजिब है वो इसके काटने के दिन दिया करो और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और मवेशियों में ऊंचे कद के और छोटे कद के जानवर पैदा किए, और जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बिलाशुबा वो तुम्हारा सरीख दुश्मन है। यहाँ देखिएगा जरा, आपको कायनात से खूबसूरत सा सिंकनाइज किया गया। पहले तो फ्रूट चाट याद आ रही थी आपको, अनारों का और अंगूरों का जिक्र सोचते हुए, तो आज फ्रूट चाट बनाते हुए जरा सा गौर कीजिएगा कैसे अल्लाह सुबहान ताला ने फल के पकने को मोमिन के ईमान के पकने के साथ जोड़ दिया। याद रखिए, मोमिन पर कायनाती एहतमाम का कुछ असर होता है। एक फल को पकता देखकर वो भी सोचता है कि मेरा ईमान, मेरा दीन, मेरा इस्लाम कच्चा है कि पक्का, मैं हिदायत की तरफ जो चल रही हूं तो क्या वाकई ये हिदायत की तरफ रुका हुआ सिलसिला तो नहीं है। और ये एहतमाम बंदा मोमिन के दिल में तकवा पैदा करता है। आप देख रहे हैं कि मोमिन एक अजीब सी चीज है, कायनात में अल्लाह के वजूद की एक दलील है। बिन देखे रब को मान जाना ये कोई छोटी बात थोड़ी होती है, तो अल्लाह सुभान व तआला ऐसे ही लोगों के लिए यहां बात करते हैं। मोमिन का दिल शुक्र के जज्बे से भर जाता है। अगर आपके दिल में शुक्र के जज्बे आ रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने आप को मुबारक दीजिए, क्योंकि ये शुक्र ही असल में बाद में फिर अमल में ढल जाता है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा करने की जिद्दोजहद में लग जाता है। अब चूंकि खाने पीने की बात हो रही है तो फ्रूट चाट बनाते हैं, आधा छिलकों के साथ तो फ्रूट नहीं फेंकते, ना शुक्री होगी। हाय गला हुआ है, सारे ही फेंक दो, हालांकि आधा गला हुआ था, क्यों गलने दिया, ये आपकी हिमाकत है। वो औरत इंतहाई ना समझ और फोहड़ है कि जिसके फ्रिज में कोई चीज खराब हो जाए और वो ट्रैश में चली जाए, जिन्ना शुक्री है। तो कायनात के अंदर इन मिसालों से अपने लिए अमल की बात लेते जाइए। फिर फरमाया, पैदा किए 8 नर मादा यानी भेड़ में 2 किस्म और बकरी में 2 किस्म, आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों, तुम मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर सच्चे हो। और ऊंट में 2 किस्म और गाय में 2 किस्म, आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों। ये सब जुहूफ़ अल-कौली गुरूरा थी। ये वो रसूमात है जो आज हमारे कल्चर में किसी और रंग में, उनकी इस तरह की जीवो गरीब कहानियां थी। तो क्या पता चला कि जब लोग वही इलाही के पीछे नहीं चलते तो उनको शैतानी वही के पीछे चलना पड़ता है। अल्लाह ताला पूछते हैं ऐसे लोगों से, क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया, तो इससे ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील झूठी तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखलाता। अमल का नुक्ता लीजिए, साउंड नॉलेज लीजिए। कहावतें, कहानियां, फजीलतें, रिवायतें छोड़ दीजिए। आज हमारा इंडो पाक कल्चर में जो दीन फैला हुआ है, माजरत के साथ, वो भी मेड इन चाइना तो नहीं है, लेकिन वो मेड इन बरेसगीर पाको हिंद है। तो कुरान को सीखकर, हदीस को पढ़कर सबसे पहले यही ख्याल आता है कि हम आज तक जिसको दीन समझे हुए थे, कहीं वो जुखरुफल कौली गुरूरा तो नहीं थी, कहीं वो ऐसी झूठी सच्ची बातों का पलंदा तो नहीं था। और अल्लाह ताला हिदायत दे हमें। देख लीजिए, फ्लो चार्ट है आपके सामने, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन पे। अल्लाह पर झूठ बांधना क्या होता है, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देगा। और इस आयत पे गौर कीजिए तो जुल्म छोड़ें, चाहे वो नौकर पे जुल्म हो रहा है, या शोहर पे, या बीवी पे, या भाई पे, या बहन पे, या किसी और पे, क्योंकि हिदायत के रस्ते की रुकावट जुल्म। जम है ये इस बारे का, हिदायत के रस्ते की रुकावट जुल्म। जुल्म छोड़ेंगे तो हिदायत मिलेगी, वरना कई बार कुरान पढ़कर भी हिदायत नहीं मिलती। तो देख रहे हैं कि झूठ बांधना कैसे है आयत 144 की रोशनी में। पहली बात है कि अल्लाह ताला के अहकामात में तब्दीली कर देना, फिर अल्लाह ताला लोगों को बगैर इल्म के गुमराह करना, खुद साख्ता शरई अहकामात बना लेना, अल्लाह ताला की तरफ झूठी नस्बत देना। बस इस वक्त मैं आपको कुरान पढ़ा रही हूँ, डरते दिल के साथ, कांपते हाथों के साथ पढ़ाती हूँ। अगर मैं पढ़ाने में कोई अपना ख्याल पेश कर दूं, मैं अपनी किसी एक खास सोच को, किसी एक ग्रोह या एक नजरिए को अगर मैं फॉलो करती होती, तो मैं उसको पेश करने के लिए उसकी बातें आपके सामने रखती। कोई एक मसलक होता मेरा, कोई एक मेरी खास कोई आइडेंटिटी होती, तो मैं जानते बूझते, कभी जाने कभी अनजाने में उसके दलाइल को सच करने के लिए बोलती, तो ये अल्लाह पे झूठ बांधना होता। कुरान को हमेशा ऑर्गेनिक लिया करें, नेचुरल। उन लोगों से कुरान लीजिए जो विदाउट इमोशन एंड बगैर किसी जोश के कुरान और सुन्नत को लेते हैं। लोगों की बातें सर आंखों पे, बुजुर्गों के किस्से सर आंखों पे, लेकिन कुरान सुन्नत की जगह वो नहीं ले सकते। आयत 145 में अब अल्लाह ताला असल दीन दिखाते हैं। पीछे अभी तक जितनी आयतें हमने पढ़ी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से पहले ही हमने सूरत अल-अनाम पूरी करके सूरत अल-अराफ शुरू की थी। एक एक आयत पे हमने घंटों के एतबार से बात की हुई है। अल्लाह ताला उसको भी हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। आप सुनना चाहें तो इन्हीं आयतों को इन डेप्थ सुन सकते हैं बाद में कभी, जब आपका दिल चाहे। तो यहाँ क्या है कि दीन इस्लाम में हराम अशिया क्या है, यानी मुशरिकीन मक्का ने चूचू का मुरब्बा बना लिया था दीन को। ये तुम कह दो हराम, ये मैं कहती हूँ, ये अम्मा कहती हैं, ये अब्बा कहते हैं, ये फलां कहते हैं। कहा नहीं, आओ तुम्हें बताऊं कि दीन कितना आसान है। और माजरत के साथ, जहां आज हमारे यहां भी एक मजहबी तबके में बड़ी शिद्दत पाई जाती है, वो तो वजू भी नहीं करते लोटे के बगैर, और लोटा भी मिट्टी का, और वो भी बैठ के, और मुंह भी किबले की तरफ। अब एक नया बंदा जो हिदायत की तलब लेकर आया, आप इतनी शर्तें लगाए, वो कहेगा मैं नहीं पढ़ता नमाज। अल्लाह के नबी ने जब ये नहीं लगाए तो आप क्या, वो जी अल्लाह के नबी साबुन नहीं लगाते थे, आप भी नहीं लगाएं। अल्लाह के बंदो, कैसी बातें करते हो, फिर आप जहाज में क्यों बैठते हो, गाड़ी में क्यों बैठते हो? अगर आपको ये चीजें बिदत लगती हैं, तो फिर तो आप भी बिदत हैं, आप तो बाद में पैदा हुए। तो ये बात गलत है, दीन का असल रुख रखिए। हर बात को बिदत नहीं कहा जा सकता, हर चीज को खिलाफ शरीयत नहीं कहा जा सकता। जो चीजें अल्लाह ने बता दी वही हमारे लिए काफी हैं। आइए सुनते हैं ये आयत, आप किसी को कोट कर सकते हैं कि दीन इस्लाम में क्या चीजें हराम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इंडेक्स ऑफ कुरान का एक और जेम बन गया कि आप फौरन लोगों को बता सकते हैं कि कुरान पाक में ये चीज मैंने खुद पढ़ी। और कुरान सामने खोलने से ये फायदा होता है, और मुझे यकीन है घरों से सुनने वाले सब मुसहफ खोल कर सुन रहे हैं। आप कह दीजिए, जो कुछ अहकाम बजरिए वही या मेरे पास आए, इनमें से तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो, या कि बहता हुआ खून, या खिंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क का जरिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया हो, फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते के ना तो तालिब लज्जत हो और ना तजावुज करने वाला हो, तो वाकई आप करब गफूर रहीम है। तो दीन आसान, दीन सादा, वही चार चीजें जो हमने पीछे पढ़ी वही यहां भी मौजूद है। याद रखिए, जब दीन में कमी बेशियां होती हैं तो उससे क्या होता है, दीन मुश्किल होता है। यही चीज अब अगली आयतों में हम पढ़ने लगे हैं। यहूद के उलमा ने अपने फतवों पे, अपने इज्तिहादात पे और अपने ख्यालात और जोम पे चीजों को क्यास करते हुए दीन को इतना मुश्किल कर दिया कि उनकी शरीयत मुश्किल हुई। कैसे, देखिएगा 146 से 150, नेमतों से महरूमी। वाल लजी नहादू हर्रमना कुल लजी जुफर, और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी में से इन दोनों की चर्बियां हमने इन पर हराम कर दी थी, मगर वो जो इनकी पुश्त पर यांत्रियों में लगी हो या हड्डी से मिली हो, इनकी शरारत के सबब हमने इनको ये सजा दी और हम यकीनन सच्चे हैं। देखिए अंदाज क्या खूबसूरत है। आप कह लें कि तौरात की बात इधर कुरान में आ गई, तो जब कौमें सरकशियां करती हैं तो अल्लाह ताला कभी कभी सजा देने के लिए फिर अहकामात को मुश्किल से मुश्किल तर कर देते हैं। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अजाब मुजरिम लोगों से ना टलेगा। ये मुश्रकिन यूं कहेंगे कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे बाप दादे। देखिए अपने शिर्क की कह लीजिए अपने शिर्क का गुना भी नाउज बिल्ला अल्लाह ताला पे डाल रहे हैं। आज भी लोग यही करते हैं, अच्छा जी अगर अल्लाह चाहे तो मुझे रोक ले बुराई से, तो भाई रुकोगे तो रोकेगा, तुम नहीं रुकोगे तो वो क्यों रोके तुमको? क्योंकि हिदायत का दरवाजा अंदर से खुलता है, आप चाहेंगे अल्लाह आपको जरूर रोकेगा। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तकजीब की थी, यहां तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप कहिए क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे सामने जाहिर करो। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अटकल पच्चू से बातें बनाते हो। आप कहिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही, फिर अगर वो चाहता तो तुम सब को राह रास पर ले आता। दुआ कीजिए अल्लाह हमें राह रास दिखा दे। आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दें कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम कर दिया। ये असूल लिख लें अपने लिए, 150 आयत लिख के रख लीजिए। जब कोई बंदा कोई बात दीन के नाम पे पेश करे आप कहें रेफरेंस दीजिए। हमारा दीन रेफरेंस का दीन है, शहादत का दीन है। अगर वो गवाही दे दें तो आप इसकी शहादत ना दीजिए और ऐसे लोगों के बातिल ख्यालात का इत्तबा मत कीजिए जो हमारी आयतों की तकसीब करते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। क्या पता चला कि मोमिन को कॉन्फिडेंस होता है अपनी बात पे कि जो भी बात कर रहा हूँ जिस बात पे अमल कर रहा हूँ वो बड़े सोच के शऊर के साथ मांग रहा हूँ। मुआशरे की गलत बात को सुनकर भी वो नहीं मानता, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो और वो अकेला एक तरफ हो। आयत 151 से 54 में दीन का खुलासा है, यानी थोड़े थोड़े अरसे के बाद कुरान पाक में आपको आयतों का एक ऐसा हिस्सा दिखेगा कि जिसको आप कह सकते हैं उम्महातुश शरिया, बदीहातुश शरिया भी कहते हैं, यानी फितरत में पड़ी हुई चीजें, और ये वो चीजें हैं जो हर नबी की उम्मत पे ऐसे ही थी। इस्लाम पिछली किताबों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, सिर्फ उन्होंने जो उसमें साबके और लाखे लगाए थे उसको निकालता है। तो लिहाजा इस आयत को सुनते वक्त खुशी महसूस कीजिएगा। और ये भी आप देख रहे हैं साथ साथ आठ आठ पारों के बाद आ रहा है। पहले पारे में आप सूरह बकरा में पढ़ा, आयत बिर भी इसी से मुतल्लिक थी, टेन कमेंडमेंट्स वाली आयत पहले पारे में थी, अब यहां ये आ रही है। फिर इसी तरह आपको इसी तरह का एक मजमुआ तकरीबन सात पारों के बाद सूरत बनी इसराइल में भी दिखेगा और फिर आगे एंड तक 30th पारे तक में चलेगा ये सिलसिला। रिमाइंडर्स हैं ये आपके मेरे लिए कि आओ जरा रिवाइज करो कि दीन क्या है। قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم اليكم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا। आप कह दीजिए कि आओ मैं तुमको पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया, यानी खुद साख्ता शरीयत के मुकाबले में अल्लाह की शरीयत सुन लो। तुम तो इसको भी हराम कहते हो उसको भी हराम कहते हो, और लफ्ज हराम आज उम्मत मुस्लिमा ने भी बहुत ही खुला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना तो शायद छुरी ना इस्तेमाल करे जितना लफ्ज हराम बोल देते हैं। अल्लाह कहते हैं ऐसे ना कहा करो हराम और हलाल को। हराम वो है जो अल्लाह ने कर दिया, और वो क्या है? वो ये कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत ठहराओ। बात करनी है तो इस पे किया करें, लोगों के अंदर से खत्म करना है तो शिर्क कीजिए। क्यों सिगरेट और पानी पे आ गए और क्यों उनके नाखूनों पे आप आ गए? पहले उनके अंदर से शिर्क खत्म कीजिए और माँ बाप के साथ एहसान करो और अपनी औलाद को इफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको और इनको रिस्क देते हैं और बेहजाई के जितने तरीके हैं इनके पास भी मत जाओ, ख्वाब वो एलानिया हो ख्वाब पोशीदा हो। और जिसका खून करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है इसको कत्ल मत करो। हाँ मगर हक के साथ इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया जा रहा है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास मत जाओ मगर ऐसे तरीके से जो पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रुष्ट यानी बलूगत तक पहुंच जाए और नाप तोल पूरी पूरी करो इंसाफ के साथ। हम किसी शख्स को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, गो वो शख्स खराबदार ही हो। और अल्लाह ताला से जो अहद किया है इसको पूरा करो, इनका अल्लाह ताला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो। ये है और ये है मेरा दीन, मेरा रास्ता जो मुस्तकीम है, बस इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। इसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई हो और रहमत हो ताकि वो लोग अपने रब के मिलने पर यकीन लाएं। यहाँ देखिए कि जो अहकामात की डिटेल्स हमने देखी है, मैं पढ़ते हुए सोच रही थी इतना क्लीन एंड क्लियर खूबसूरत पैगाम है इस्लाम का कि UNO में जाके कोई पढ़ दे। लाइए ये आयात दीजिए और कहें कि जाए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो उसी को समझते हैं ना, कि जाके वहां लोगों को इस्लाम बताओ, कोई शर्म की बात नहीं, नो रिजेंटमेंट। इस्लाम को बुरी बात को हुक्म देता ही नहीं है कि जिसको छुपाएं। आप देखिए कि 24 घंटे ऑलमोस्ट ऑन एयर लाइव ट्रांसमिशन चलती है, सच है तो चलती है ना, छुपाने वाली हो झुकाने वाली हो तो ये काटो ये बांटो, ये ना पता चले वो ना चले, तो कॉन्फिडेंस लाइए। अल्लाह ने आपको वो दीन दिया जिसका एक एक हुक्म फितरत से मुतल्लिक है। जिस रब ने फितरत बनाई उसी ने कुरान दिया, तो हर वो चीज जो आपने अभी इधर पढ़ी है यही तो एथिक्स है आज। इसी को तो आज इखलाकियात के नाम पे वेस्टर्न पढ़ाते हैं, इसी को लाइफ कोचिंग वाले आपको कोचिंग सेशन के नाम पे हजारों डॉलर लेके पढ़ाते हैं, यही मोटिवेशनल स्पीकर का पैगाम है आपको। तो कुरान छोड़कर आप किधर भी चले जाए वापिस कुरान ही आपकी रास्ता बनेगा। फिर आप देखिए कि इसमें तौरात की भी बात हुई, हकीकत है कि अपने वक्त की बेहतरीन किताब थी। 154 में अल्लाह ताला ने ये जो बात कही कि लिकुल्ली शयइन व हुदन व रहमा, तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह की किताब तमाम हिदायत और रहमत है, यानी इस किताब को छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम्हें क्या फिक्र है इधर से उधर पढ़ने की देखने की सुनने की, जिसने कुरान पढ़ लिया उसको किसी और चीज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत फ्लो चार्ट है कि सिराते मुस्तकीम से दूरी कब होती है, बड़ी तवील आयत है और इस पे बात करनी भी चाहिए, इसलिए आप देखिए आप इसके अंदर जितने पॉइंट्स है उसको एक जगह जमा लिखिए। शिर्क के बाद, यानी सिराते मुस्तकीम है ही तौहीद, कुरान और सुन्नत, अल्लाह और उसके रसूल को मानना, और हिदायत के बाद जन्नत जहन्नम का यकीन रखना, ये सिराते मुस्तकीम है। इसको पाने के बाद जो इंसानी मामलात में चीजें आज आपको मुझे हिदायत भरे दिल की तरफ के साथ लेनी है, वो क्या है कि मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकालनी है। नंबर एक, वालदैन से बदसलूकी, कभी की है तो माफी मांग लीजिए, दुनिया से चले गए तो उनकी तरफ से सदका कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़िए, उनकी मगफरत की दुआ कीजिए, और जिंदा हैं तो माफी मांग लीजिए, माफ कर देंगे, एक सेकंड लगाएंगे वो, आपने तो कई साल लगा दिए, वो तो सिर्फ एक सेकंड लगाएंगे, शर्त है आपके पलटकर उधर जाने की। फिर बेहयाई को निकालना, कत्ले नाहक, माले यतीम का खाना, नाप तोल में कमी, ना इंसाफी और जानिबदाराना रवैये और बदहदी, ये हैं जी इंसानी मामलात जो कुरान ने बता दिए। अब आपकी मेरी ये चेकलिस्ट है, अपनी डेली शीट में इसको डालकर चेक कीजिए कि मैं किस पेपर में कितने नंबर लूंगी, पास हो जाऊंगी फेल होंगी। हमारा कोई एक फील्ड बड़ा अच्छा होता है, कभी दूसरे में फेल होने वाले होते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। आगे आयत 155 से 158 किताबें हिदायत की बातें। देखिए हिदायत किताब के बगैर मिल नहीं सकती, ये तो लिख के रख लें। रास्ते मिल जाते हैं छोटी छोटी बातों से, मोटिवेशंस मिल जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लोग लेक्चर्स अटेंड करते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, रैंडम नॉलेज इधर का उधर का, उससे पढ़ उसका सुन, व्हाट्सएप पे इधर के मैसेजेस, उधर का लेक्चर, किसी का एक टोटा सुना, फायदा होगा, लेकिन हिदायत तब मिलती है जब फातिहा से नास तक उस्ताद के साथ कलम पकड़कर शागिर्द बनते हैं, फिर आपके लिए इस रास्ते जन्नत के आसान होते हैं। आज ये मिटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस साल हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, तहदीस नेमत पे सब साथियों को बता रही हूँ कि इस साल के जो बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे तय हुए उसमें एक राइटियस लीडर्स का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक, असबाब जो भी हैं उसके तहत रहते हुए हमने पाकिस्तान में एक शहर के स्कूलों में ये सिलसिला शुरू कर दिया और मांग है कि पूरी हो नहीं रही। और वो क्या है कि बच्चों को छठी क्लास से शुरू करवा के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दसवीं तक पूरा कुरान पाक वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाएगा। वो साथी जो 2 साल की मेहनत से खेती के तौर पे तैयार हुए अपने सीनियर्स की मौजूदगी में अंडर ट्रेनिंग है, और अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो सिर्फ 5 साल दीजिए, आपके मुल्क के अंधेरे जरूर दूर होंगे। ये मैं आपको अल्लाह पे नजरें लगा के कहती हूँ। ये निकला हुआ है और वो मासूम बच्चों की जो सैकड़ों की शेयरिंग्स आती हैं रोज ग्रुपों में इधर से उधर, तो मेरा दिल भर जाता है कि अल्लाह ये चीज मिसिंग थी। हमारा बच्चा मैट्रिक तक चला जाता है और उसको अभी तक सूरह फातिहा का तर्जुमा भी नहीं आता। तो ये दुआ करिए और इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, इनके अंदर अपने हिस्से डालना और इसके ऊपर अपने आप को खपाना, ये है वो चीज के जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला फिर इसकी फसलें और इसकी खेतियां तैयार करता। थोड़ा सा भी जिसने कुरान सीखा है उसको भी आगे लेकर ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्यों खुद को जाया कर रहे हैं घरों में बैठकर? ऑनलाइन से सेशंस होते हैं, ऑन साइट पे सेशंस होते हैं, अपने आप को ऑफर कीजिए। मैं तो जरा सी हाथ सीधा हो जाए तो ऑनलाइन के साथ इस चीज को जोड़कर पूरी दुनिया के उन साथियों को इस वक्त दावत दूंगी। आपने किसी प्लेटफॉर्म से भी कुरान पढ़ा, तफसीर से पढ़ लिया, आपने सही सोच के साथ पढ़ा, कुरान सुन्नत के ग्लासेस के साथ पढ़ा, कोई मसलकी या कोई फिकही छाप नहीं है आपके ऊपर, बिस्मिल्लाह कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। कुरान अगर आपने सही, किसकी जुबान किसी की भी हो सकती है। देखिए एस्प्रिन तो एस्प्रिन है, डिस्प्रिन डिस्प्रिन है, एक डॉक्टर ना दे दूसरा दे, दीनदारों के दिल खुले होने चाहिए। क्यों जमातों और नर्सेलों में बंद होकर आप कहते हैं कि मैंने इधर से उधर नहीं जाना और उधर से इधर नहीं जाना? क्यों, ये कोई फौजें तैयार हो रही है? आपने कुरान पढ़ा और आप घर बैठे में, आप जाइए वॉलंटियर फॉर्म फिल कीजिए, आपको बच्चों की क्लास देते हैं, आप बैठिए, आपकी भी आखिरत संवरे, बच्चों की भी संवरे। सोने की सदी नहीं है ये, जागिए, होश कीजिए, वक्त कम है। गोदों में बच्चों को बिठाकर इस वक्त भी जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनके बच्चों को बहकने से बचा ले। कल हमारी एकेडमी की पिक्चर्स आई और उन्होंने दिया और उनके मुझे जुमले मेरे दिल पे फवार की तरह, जैसे कहते ना बरसे, कि साजा मैं तो सुनती हूँ, ये मेरी बच्ची भी आपका सुन के सोती है, क्योंकि वहां उनके पास फजर से पहले फजर के बाद का वक्त है। क्या वो दुआएं नहीं लेगी बच्ची और वो बच्चा, और वो बच्चों के सीनों में कुरान जा रहा है? तो जो माएं अपने बच्चों को पीछे डाले बगैर गोदों में बिठाकर आपकी खिदमत कर रही हैं, क्या अल्लाह उनका मान नहीं रखेगा? तो ये दुआ कीजिए। तो अब ये किताब की बात पे मैं हमेशा ही इमोशनल हो जाती हूँ। आइए आयतों का तर्जुमा पढ़ते हैं, आयत 155 से 158, किताब हिदायत। और हाथ लगाइए अपने कुरान को, अल्लाह कहते वह हाजा किताबन, पता नहीं किसको तुमने दीन समझा आज तक, ये हाजा तुम्हारे घर पड़ी हुई थी, गर्दलू थी, तुमने इसको सिर्फ कुरान खानियों पर पढ़ा जब कोई मर जाता है, या रमजान में 5-5 सुपारे पढ़ते हो, हालांकि ये वो किताब है, अनजल ना हो, हमने इसको नाजिल किया, ये एक किताब है जिसको हमने भेजा, बड़ी खैर और बरकत वाली, सो इसका इत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। कहीं तुम लोग यूं ना कहो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो दो फिरके थे इन पर नाजिल हुई थी और हम इनके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर हैं। अल्लाह अकबर, हम तो इसके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे। चंद सेकंड सोचिए, आज उम्मत का जमूत क्या यही नहीं है? और सब पढ़ लिया, किताब ना पढ़ी, मैट्रिक तक पहुंचने तक बच्चा तकरीबन 100 किताबें एज अ टेक्स्ट पढ़ चुका होता है, हर साल की साइंस केमिस्ट्री और इधर उधर की किताबों के बाद। एक डॉक्टर बनने वाली बच्ची बच्चा 200 किताबें एक आम तौर पे पढ़ चुका है, रेफरेंस बुक्स तो अलग होंगी, और ये किताब किधर है? हमारे डॉक्टर बच्चों के हाथों में ये किताब क्यों नहीं? क्यों भाई, वो दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए थे कि डॉक्टर बन के उसके बाद इंसानियत की खिदमत करें, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी भी तो खिदमत करो। या यूं ना कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इनसे भी ज्यादा राह रास्त वाले होते, यानी हम राह रास्त पर होते। बस अब इन तमाम, बस अब तुम्हारे पास रब के पास से एक किताब वाजे और रहनुमाई का जरिया और रहमत आ चुकी है, अब इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बताए और इससे रोके? हम जल्द इन लोगों को जो हमारी आयतों से रोकते हैं इनके इस रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। बहुत बड़ा थ्रेट है इधर, इन आयतों से किसी को न रोकना। आज लोग, पढ़े लिखे लोग, दीनदार लोग कुरान पढ़ने से रोकते हैं। मेरे दिल में एक छाला है कई साल से। हमारी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, हमारे साथ कोर्सेज में थी, और जो हमारा फुल टाइम कोर्स एस बिलोल जन्ना, उसकी स्टूडेंट थी, बेस्ट बेहतरीन स्टूडेंट थी। एकदम उन्होंने आना छोड़ दिया, हल्के हल्के होते होते थोड़ा पीछे हुआ। एंड पे जो बात निकली कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्यों? घर वालों ने मना किए। घर वालों ने मना क्यों किया? फुला जमात से एक आलिम हमारे पास आए थे, उनको पता चला, बताया गया कि ये जाती हैं इधर पढ़ने के लिए कुरान, तो किस्सा मुख्तर के उन्होंने रोक दिया कि मत भेजो उनको, कि ये तो कुरान पढ़ा के गुमराह करेंगे और ये और वो, और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये बात याद रह गई, हमें ये याद रह गई बात कि कुरान से रोकने वाला दीनदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे। तो देखिए 157 में बहुदम व रहमा, हिदायत तो आ चुकी है, जो सरासर रहमत है, तो कौन जालिम है जो इससे मुंह मोड़ेगा? बोलिए कि अल्लाह मेरा दिल तो अब फट चुका है, एहतिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ तो अब कबूल होने को आ गई, तो अल्लाह तू मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं कभी इससे मुंह न फेरूं। और अगर फिर भी मुंह फेरा है तो सवाल है एक, क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए, या इनके पास आपका रब आए, या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए? जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम न आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता, या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। क़ुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों की तरफ इशारा है, जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। और अब तो फितनों के दौर में हमें इसकी बहुत ज्यादा क़ुर्बत महसूस भी हो रही है कि क़यामत करीब है। आयत 159, फिरकाबाजी की मज़म्मत। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम वकानु शिया, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस इनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर इनको इनका किया हुआ जतला देंगे। 3 सेकंड गौर कीजिए, हर वो बंदा जो किसी भी फिरके और मसलक की दावत दे, उम्मत को तोड़े, इस्लाम के लफ्ज को हटाकर कुछ और डाल दे, तो उसके लिए ये पैगाम है क्या कि अपने आप को इस चीज से रोको, अल्लाह हमें एक कर दे। कैसे? आइए देखिए। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपको इनसे कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, इसको नोट कीजिए, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, तो फिर फिरके वाले का दीन तो फिरके वाले के साथ होगा, उसका ताल्लुक नबी सल्लम से बराह रास्त तो नहीं रहेगा। आयत 160 से 161, आपका इंडेक्स पूरा बन रहा है। क्या कोई पूछ ले कि कुरान की आयत दिखाओ कि कहां लिखा है कि हर नेकी का अजर कम से कम 10 पे है? तो पूरे यकीन के साथ खोलिए और बोलिए, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, हर नेकी का अजर 10 गुना है, जो शख्स नेक काम करेगा इसको इसके 10 गुना मिलेंगे, और जो शख्स बुरा काम करेगा इसको इसके बराबर ही सजा मिलेगी, और इन लोगों पर जुल्म न होगा। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है, कि वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे, फोकस्ड, और वो शिर करने वालों में से न थे। अल्लाह में भी फोकस्ड कर दे, क्योंकि पारे अब सूरत का ततिमा है, एंडिंग आयात है। अल्लाह ताला आपको मुझे ये बात सिखा रहा है कि जम जाओ, फोकस हो जाओ। दर दर की खाक छानने वाले को एंड पे कुछ भी नहीं मिलता, इस कुरान और इस इस्लाम में ही तुम्हें हिदायत मिलेगी। और अब आखिर में देखिए 162 से आगे 163 तक टॉपिक लिखिए, अल कुरानु हयाती, कुरान मेरी जिंदगी है। फल इन्नसलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब खालिस अल्लाह ताला ही का है, जो सारे जहान का मालिक है। पूछिए कि आपके दिल की ये पुकार है, क्या इस तरह 24/7 के मुस्लिम हुए? अल्लाह ताला हमें 24 घंटे का मुसलमान कर दे। इसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी का हुक्म हुआ है, और मैं सब मानने वालों में से पहला हूं, यानी बारिश का पहला कतरा बनिए। पूरे फोकस होकर अपने खानदान में आप पहले बन जाइए जो पूरे तौर पर अल्लाह के दीन को मानने वाला हो, अल्लाह ताला आसान करेगा। और आगे आयत 164 से 165, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुल अगैरल्लाह अबगी रब्बा, आप फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं? हालांकि वो मालिक है हर चीज का। और जो शख्स भी कोई नेकी करता है वो इसी पर रहता है, हालांकि वो मालिक है हर चीज का। और जो शख्स भी कोई अमल करता है और वो इसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जवाब दिलाएगा, फिर वो तुमको जता लाएगा कि जिस जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे। और वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए इन चीजों में जो तुमको दी गई हैं। बिल यकीन आपका रब बहुत जल्द सजा देने वाला है, और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मगफरत करने वाला बड़े रहम वाला है। लिखिए, हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, हर नेमत का इम्तिहान है। अपने 5, 4, 3, 2, 1 जो भी है बच्चों के नाम लिखिए, और हर नाम के साथ लिखिए, ये मेरा बच्चा मेरे इम्तिहान का पर्चा है। एक भी बिगड़ गया तो कहाँ जाएंगे। और जो अल्लाह के दीन से माएं जुड़ जाती हैं, अल्लाह उनके बच्चों को बिगड़ने देता नहीं है, और बिगड़े हुए को भी ले आता है उनकी आहोजारियों और उनके अल्लाह की किताब की खिदमत की वजह से। अल्लाह सब बिगड़ों को वापस ले आ। कितने खूबसूरत पैगाम पे सूरत मुकम्मल हुई। आप याद कीजिए सूरत अल इनाम की पहली आयत क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अंधेरे रोशनियों का जिक्र था। तो आपको मुझे 70,000 फरिश्तों के जुलूफ में उतरी हुई सूरत पढ़ने का मौका मिला। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततिमु सालिहात। आगे एक और खूबसूरत सूरत है, सूरत अल अराफ। इसकी 1 से 87 आयात हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तरतीब के एतबार से 7वें नंबर की सूरत है, और जैसा कि अनाम के साथ बताया था कि उसका जोड़ा है, उसमें तस्कीर भी अला इल्ला थी, अल्लाह की नेमतों की तस्कीर थी। इसमें तस्कीर भी अय्याम इल्ला है, क्या कहते हैं उसको, मेमोरियल डेज, तारीख में वो वाकयात जो बड़े बड़े गुजरे उसका जिक्र है। तो जरा सा देखिए सूरत अल अराफ की आयतों में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि कुरान अज़-ज़िक्र है, जो मोमिनों के लिए एक नसीहत है। ज़िक्रा लिल मोमिनीन पहली ही आयत में मिलेगा। फिर इसमें हम तबाहशुदा कौमों का हवाल पढ़ेंगे। अमाल का भारी और हल्का होना कैसे होता है उसको देखेंगे। तख्लीक इंसानी का बयान है, और यहाँ आपको आदम और इबलीस की कहानी पूरी तफसील से मिलेगी। और यहाँ ट्रैक्स ऑफ शैतान देखेंगे, शैतान की चालें, कैसे शैतान नासिख बनकर आता है और हमें लूट के ले जाता है। फिर हराम और बेहयाई का तज़किरा होगा। पहली दुआ जो इंसान को सिखाई गई थी वो इस बारे में, यानी आदम अलैहिस्सलाम की दुआ रही है इस बारे में, इस हिस्से में। फिर मकासद लिबास, ये वो हिस्सा है जहां पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर कुरान पाक में लिबास और उससे मुतल्लिकात की बात आ रही है। तकवा के खुद साख्ता मेयार से बचने की बातें हैं, अंबिया कराम के तरीकों को अपनाने की बात है। फिर जहन्नम की खबरें हैं, मुस्तकबिरीन के लिए जन्नत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे नहीं खुलते, यानी मुस्तकबिरीन के लिए ना तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं ना जन्नत के। फिर यहां आपको जन्नतियों का पहला कलाम भी दिखेगा। असहाबे आराफ कौन थे उनका जिक्र पढ़ने लगे हम। जन्नतियों और जहन्नमियों का एक मुकालमा जो बड़ा ही दिल को उदास करता है वो पढ़ेंगे। कुरान कैसे किताब हिदायत और रहमत है इसको देखेंगे। और फिर कायनात की कुछ निशानियां के बंजर और जरखेज जमीन में हमारे लिए अमल की बात क्या है। और फिर आखिर में अंबिया कराम के किस्से, खास तौर में उसमें कौम शुएब का किस्सा जो माली बिगाड़ में आम था। अल्लाह ताला में पढ़ने की तौफीक दे। तो सूरत अल अराफ में इंजार है, बड़ी सख्त सूरत है, सच बताऊं पढ़ाई नहीं जाती, आराम से नहीं पढ़ी जाती, दिल डरता है अंदर से। और इसमें आपको फिर दिखता भी है कि कैसे जब कौमें वाकई हिदायत की तलब जागने के बाद भी हिदायत पे ना आना पसंद करें तो अल्लाह ताला फिर कैसे उनको अजाब की धमकियां देते हैं। आइए शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें किताब से ही हिदायत दे दे, अजाब से हिदायत देने की बजाय। जो कौमें किताब पढ़ के सुधर जाती है ना, फिर अल्लाह उधर अजाब नहीं लाता, उधर अल्लाह बीमारियां नहीं लाता, परेशानियां नहीं लाता, आफात और बलाएं नहीं लाता, और अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। किताब उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिक हरज मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही वज़िक्रा लिल मुमिनीन। हरूफ मुक़त्ततात हैं सबसे पहले, इकट्ठा करके पढ़े जाते हैं। हम तो इतनी नफरमानी नहीं कर सकते कि अलिफ लाम मीम स्वाद को इकट्ठा पढ़ के अलमस कुछ पढ़ दें, तो फिर इस्लाम की बाकी बातों को भी मानना है इंशाअल्लाह ताला, उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना है। आयत नंबर 2 से 7 का टॉपिक लिखिए, तबाह शुदा कौमों का अहवाल। बड़ा ऐसे लगेगा आपको कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। किताब उन्जिला इलैका फला यकुन फी सदरिक हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही वज़िक्रा लिल्मुमिनीन। ये किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई है कि आप इसके जरिए से डराएं, बस आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी ना हो, और नसीहत ईमान वालों के लिए। तुम लोग इसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह को छोड़कर मन घड़त सरपरस्तों की पैरवी मत करो। तुम लोग बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। सच है ना, हैं भी थोड़े और नसीहत भी थोड़ी है जो लोग लेते हैं। क्यों नहीं लेते लोग नसीहत, टाइम ही नहीं है, और ही मशगले हैं और ही मसरूफियात हैं। तो अल्लाह ताला पिछली कौमों के तस्करों के साथ हमें इसकी दावत देते हैं कि तुम नसीहत को बढ़ा लो। आगे बताया जा रहा है कि जो कौमें और जो इंसान और जो गिरोह मौका मिलने के बावजूद भी हिदायत नहीं लेना चाहते, तो उनके साथ अल्लाह का मामला क्या है, डिमोलिश देम। कैसे, वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, और बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया, और इन पर हमारा अज़ाब रात के वक्त पहुंचा। ये ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे, सो जिस वक्त इन पर हमारा अज़ाब आए, इस वक्त इनके मुंह से सिवाय इसके और कोई बात ना निकली कि वाकई हम जालिम थे। फिर हम इन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनके पास पैगम्बर भेजे गए थे, और हम पैगम्बरों से जरूर पूछेंगे। फिर हम चूंकि पूरी खबर रखते हैं, इनके रूबरू बयान कर देंगे, और आप कुछ बेखबर न थे। यानी पूछना तो बस एक गवाही कायम करना है, रिकॉर्ड तो सारा हमारे पास है। अल्लाह कहते हैं मैं पूरी रिपोर्ट खोलकर सामने रख दूंगा कि देखो तुम ये करते थे। तकरीबन 2 माह पहले नॉर्वे में एक जगह में जमीन खुली और कई घर अंदर चले गए। यहां के लोगों को तो मालूम है, बाहर वालों को मैं बता रही हूं किस तरीके से खसफ हुआ। बड़े बड़े घर गए अंदर, गाड़ियां गई, लोग गए। बस इसी को बड़े पैमाने पे ले आइए। अगर कोई नबी आज होता तो शायद खबर देता कि ये किसी पकड़ का शिकार थे। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसी अचानक किसी पकड़ से बचाए। जब तलब जागी नेकियों की, तो अल्लाह कहते हैं आओ मैं तुम्हें दूं मजीद नेकियों के मौके। बहुत ही खूबसूरत आयत है, आयत 8 से 10 में, आमाल का भारी होना और हल्का होना, यानी किसके पलड़े भारी। और इन आयतों पर एक लेक्चर है, वो भी आप भेज सकते हैं साथियों को सुन सकें कि आमाल नामे को भारी करने की कौन सी चीजें हैं। वल वस्नु यौम इज़िन हक, कैसे होगा, और उस रोज वजन भी बरहक होगा। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा बस ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा बस ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया बस सबब इसके कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि थोड़ों में से निकलकर ज्यादा में आ जाए। नेमतों की कदर कीजिए, नेमतों को जाया ना कीजिए, और शुक्र के वो 3 दर्जे बिलकल बिल लिसान बिल अमल, ये कीजिए। दिल से हमेशा कंटेंट रहा करें, सबसे अच्छी हूं मैं, सबसे ज्यादा मिला है मुझे। और इसी तरह से जुबान से भी तस्करे कीजिए। बंदे मोमिन की जुबान पे एक ही तरह ना होता है, और वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद फिर अपने आमाल खा पी कर आमाल अच्छे कीजिए, ताकि वो रिस्क जो है वो अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। आगे आयत 11 से 13 में डिटेल से इंसानी तख्लीक का बयान है। आदम और हवा का किस्सा शुरू होता है। वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के, कि वो सजदा करने वालों में ना हुआ। ये 9 दफा जिक्र है कुरान में आदम की तख्लीक का। और अफसोस की बात है, कल ही मुझे एक एडमिन से एक मैसेज मिला कि अक्सर ही ये ज़ुख़रुफ़ल कॉल के ऊपर हम डार्विन थ्योरी की बात करते हैं, जो अब अपनी मौत आप मर चुकी है, कि वो फौजरी थी और वो बिल्कुल बेकार थी। आज अपने मुल्कों के नाते उन्होंने जो कहा, मैं वही बताने वाली हूँ। उन्होंने कहा कि आज अपने मुल्क में किसी एक के कहने पे इसको दोबारा ऑन कर दिया गया है, और अब फिर हमारे बच्चों को यही कहा जा रहा है कि तुम बंदरों की औलाद हो। ये कुरान की आयत क्या कहती है, हमने तुमको पैदा किया, क्या एक जुमला नहीं था इसमें आ सकता, पहले तुमको बंदर बनाया फिर उसके बाद इसको कर दिया। तो याद रखिए ये नस्लों को कुरान से दूर करने की साजिश है, और ये है ज़ुख़रुफ़ल क़ौली ग़ुरूरा, शैतान की वही दीन वालों पे भी हो जाती है। अल्लाह हमें हिदायत के बाद कभी गुमराह ना करे। हक ताला ने फरमाया वो सजदा नहीं करता, यानी आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो अल्लाह ही ने था, लेकिन इबलीस ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह सुबहान ताला ने फरमाया तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको इस अमर से किसने रोका, यानी क्या चीज रुकावट थी, जबकि मैंने तुमको हुक्म दे दिया, कहने लगा मैं इससे बेहतर हूं, आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको अपने खाक से पैदा किया। जरा नोट कीजिए शैतानी रवैये, जब हम डिटेल से पढ़ते हैं इस पीलो जन्ना में तो इसमें तकरीबन 10 से 15 रवैये हैं जो शैतान से मंसूब किए जाते हैं, जिसमें एक क्या है, अना खैरो मिन्हु, अना परस्त होना, एग्विस्टिक होना, फिर लॉजिक देना, अल्लाह के काम अल्लाह गुनाह भी करना और आगे से शर्मिंदा होना। तो याद रखिये इंसान गुनाह करे और डरे अल्लाह माफ कर देगा, बचा लेगा, रास्ता निकाल देगा कोई ना कोई, लेकिन इंसान गुनाह करे और डरे नहीं बल्कि दलीलें पेश करे तो वो इबलीस का साथी बनेगा। हक ताला ने फरमाया आसमान से उतर, तुझको कोई हक नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे, बस तू निकल, बेशक तू जलीलों में से है। क्या पता चला मुतकब्बिरीन को जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आसमानों पे ऊपर जन्नतें हैं। फिर आयत 14 से 18, शैतान की चालें, अब ये सब उसके हथकंडे हैं, शोशे हैं, जो आपके और आपकी नस्लों के खिलाफ वो कसमें खा रहे और अपने आप को सच्चा साबित कर रहे। काला, क्या कहा, काला अंजिरनी इला योमी युबअसून, देखिए लंबी उम्र मांग रहा है लेकिन गुनाहों के लिए। इसने कहा मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको मोहलत दी गई, ले लो, शान बेनियाजी है, ले लो, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है। देखिए अल्लाह ने शैतान की भी दुआ सुन ली, आप कैसे कह सकते हैं नेकों की सिर्फ सुनता है, अपने लिए खुद दुआ किया करें, फिर दूसरों की दुआएं भी आपको फायदा देंगी। इसने कहा बस सबब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया है, नाउज़ु बिल्लाह। अंदाज देखिए जरा, आज भी कुछ बदबख्तों का यही अंदाज है, कभी माँ बाप को बुरा कहते हैं, कभी उस्तादों को, कभी अल्लाह तक को भी कहने लगते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा। ये है जी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर बैठे वो को मैसेज कि आओ तो सही जरा इस रस्ते पे, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे डील करूंगा। हिदायत की तलब रखने वाला दिल सुने जरा इन आयतों को, शैतान के आपके खिलाफ मज़मूम इरादे खुल गए, साजिश बेनिकाब हो गई। और देखिए ना समझ कितना है कि खुद ही बता रहा है, जो दुश्मन अपनी चाल पहले बता दे तो मुखालिफ अपना इलाज कर लेगा, यानी शैतान में अकल नहीं है ये पता इससे चला। फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और इनके पीछे से भी, इनकी दाई जानिब से भी और इनकी बाई जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएंगे। ये दाई बाई क्या, आगे से क्या, आखिरत को भुला दूंगा, पीछे से क्या है, दुनिया को बड़ा कर दूंगा, दाई तरफ क्या है, नेकियों की को मुश्किल कर दूंगा, और बाई जानिब क्या है कि मैं गुनाहों को आसान कर दूंगा। दो सिमतें भूल गया, एक ऊपर की और एक नीचे की, और हिदायत मिलती ही ऊपर और नीचे से। अल्लाह पे नजरें लगाइए और सजदों में सर रख दीजिए तो अल्लाह ताला हिदायत देगा आपको इंशाल्लाह। जवाब सुनिए अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहां से जलीलो ख्वार होकर निकल जा, जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। गोया कि इबलीस अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया। अब आगे आयत 19 से 21 में शैतान नासिह बनकर आता है, कैसे, व यादम उसकुनन तवजो जुकल जन्ना, और हमने हुक्म दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों खाओ और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। नोट कीजिए ज़ुख़रुफ़ल क़ौली ग़ुरूरा, ये थी सबसे पहली शैतान की फौजरी आदम और इबलीस को। अब आपको पारे का रब समझ आ रहा, कभी आपने सोचा था कि इसमें ये सारा कुछ एक स्ट्रेच में ऐसे भी होगा, यानी इबलीस ने कैसे आदम और हव्वा को सबसे पहले अल्लाह ताला के खिलाफ किया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ सिखाया, और आज वो हमारे साथ भी यही करता है, हराम को खूबसूरत करके दिखाता है, हलाल को मुश्किल कर देता है। क्या किया उसने, फिर सुनिए, फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के रूबरू पे पर्दा कर दे, यानी शैतान का पहला हमला इंसान के लिबास पर हुआ, न्यूडिटी, नंगा करना, बरहना करना, यह शैतान का मोस्ट गोल है और आज के दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेहयाई है। अगर आज के दौर में कोई नबी आता ना, तो वो पहले आपकी औरतों और मर्दों के लिबास ठीक करवाता। हर दौर में कुछ ना कुछ होता है ना, तो आज हमारी शादियों के किबले ठीक कराता और आज हमारी खुशियों के और हमारी शॉपिंग सेंटर्स में बुत रखे हुए और उन नंगे स्टैचूज पे कपड़े उनको उतारता। बिलीफ में अगर आज के दौर का कोई फितना मुझसे पूछे और आप किसी भी साहिब अकल से पूछ लीजिए, वो यही दो हैं, बेहयाई न्यूडिटी और मकसद से अलग होकर अपनी जात को सेलिब्रेट करना। एक एक शादी इसकी खूबसूरत सी मिसाल आपको दगती होगी। तो देख लीजिए, वही चीज आदम के साथ भी उसने की थी और देखिए झूठ क्या बोलता है। और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में हो जाओ। अल्लाह के खिलाफ पट्टियां पढ़ा रहा है। कहने लगा, अल्लाह ने एक इल्म तुमसे छुपाया और वो इल्म जो है ना, वो हासिल कर लो ना, तो फिर बंदे को मौत नहीं आती। नाउज़ु बिल्लाह। आज भी लोगों को अल्लाह के भी खिलाफ करता है लोग, अगर इफ गॉड एग्जिस्ट तो फिर ये क्या। आज लोग कहते हैं, अगर अल्लाह है तो फिर जुल्म क्यों है, फिर अल्लाह है तो कोरोना क्यों नहीं। नाउज़ु बिल्लाह, ये सब शैतानी वही है। और इन दोनों के रूबरू कसम खा ली के यकीन जानिए, मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं। क्या पता चला, अपना बन के आता है। आई एम योर वेल विशर, आई लव यू डार्लिंग, प्लीज, ओ माय फला फुला। आप देखिए, रिश्तों में इंसानों को इस तरह से शैतान खो देता है कि हम सोचते हैं वो हमारे मुखलिस हैं, वो भी यही सोच रहे होते हैं, लेकिन असल में वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करना होता। I-22 हराम और बेहयाई की तरफ कैसे लेकर जाता है। फदल्लाहुमा बिगुरूर, और ये सारा उसका टैक्टिस है, यानी शैतान का तरीका है वारदात। सो इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और इनके रब ने इनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा शरीक दुश्मन है। अब आदम और हवा को समझ आ गया, ये क्या किया, कैसे हो गया, ये क्या हुआ। देखिए, शैतान के पहले वार में आ गए, दरख्त का फल चख लिया। अब वो कौन सा फल था आपको क्या लगे, बस एक सिंबल था, सिंबल बना दिया कि वहां एक हराम है, दुनिया में चार हैं, बस इनसे रुक जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। लेकिन दूसरे बार में नहीं आए, बरहना किया शैतान ने। अल्लाह की नाफरमानी के साथ लिबास उतरते हैं, लिख लें, नाफरमानी का लाजमी नतीजा कि लिबास उतरेगा, या उतरेगा या उतरवाएगा, या बीवी खुद उतारेगी या मियां उसको उतरवाएगा और उसको सजा संवार कर लोगों में मॉडल बनाकर पेश करेगा कि आओ मेरी इज्जत को देखो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। या फिर बाप बेटियों को नचवाएंगे और अपनी बहू को सजवाकर स्टेज पे लाकर लाके दिखाएंगे, देखिए ये लाए हम अपने घर में शोपीस, जरा आप भी इसके हुसन से फायदा उठा लीजिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ऐसा हर जुमला शैतान का वसवसा, शैतान की वही है। अल्लाह हमारे दिलों को शैतानी बातों से बचा ले। अब पहली दुआ मग़फ़रत, आयत 23 से 25। قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। दोनों ने कहा, हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तुम्हारी मगफरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम वाकई नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। हक ताला ने फरमाया, नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे वास्ते जमीन में ठिकाना है रहने की जगह और नफा हासिल करना है एक वक्त तक। वहीं पता था कि दुनिया में एक महदूद वक्त के लिए भेजे जा रहे हैं। फरमाए, तुमको वहां ही जिंदगी बसर करना है और वहीं वहां ही मरना है और इसी में से फिर निकाले जाओगे। तो ये दुआ आप भी याद कीजिए तरतीब से आने वाली दुआओं में। ये दुआ आपके अस फैनी करीब में आपको ये सारी दुआएं बिल तरतीब मिलती हैं। قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। सूरत अलआराफ की आयत नंबर 23 है। दोनों बोल उठे, ए रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हम से दरगुजर न फरमाया और रहम न किया तो हम यकीनन तबाह हो जाएंगे। आप और मैं भी दुआ कर लें अपने लिए। कोई अपना गुनाह याद करके दुआ कीजिए जो शैतान के वसवसे से, शैतान के दिल में डालने से हुआ, तो माफी मांगी, अल्लाह माफ करने वाला है। आगे से 26 से ऑनवर्ड, यहां 27 तक देखेंगे मकासद लिबास, यानी आगे हमें अब लिबास का टॉपिक मिलेगा जिसको देखते हुए हम सब ने अपने अमूमी लिबास को देखना है। और तीन जगह पूरे कुरान में ये तस्करा है। यहाँ पे आम तौर पे एक औरत या मर्द क्या पहने, फिर सूरत नूर में कि घर के महरम और गैर महरमों में क्या रखा जाए सीज़ा, और फिर सूरत नूर में बाहर जाते हुए क्या इहतमाम किया जाए। तो देखिएगा, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है। फर्स्ट, पहली चीज, लिबास का मकसद जिस्म के प्राइवेट पार्ट छुप जाएं। कैसे छुपे? दो चीजें, ना वसाफ हो ना शफाफ हो, ना सी थ्रू हो कि जिस्म से अंदर से अंडर गारमेंट्स भी झलके, और ना इतना स्ट्रेची और इतना टाइट हो जिसको आप इलास्टिसिटी वाला कह दें कि जिससे फिगर दिखे। जरा से इसकी नजर से अपने हाथों पांव टांगों हाथों बाजुओं को देखिए कि स्ट्रेची टांगों पे चिपके हुए लिबास के पजामे क्या इसमें आते हैं। और याद रखिए, लिबास औरत और मर्द दोनों के लिए, जैसे औरत अपना सतर नहीं खोल सकती, मर्द भी नहीं खोल सकता। इसीलिए फरमा दिया कि ये क्या चीज है जो तुम्हें छुपाता है। हाँ, मुजबे जीनत भी है, खूबसूरत हो सकता है आपका लिबास, मोती लगाइए, सितारे लगाइए, मुकैश कीजिए, अच्छा रंग बनाइए, कोई हरज की बात नहीं है। और तकवा का लिबास ये इससे बढ़कर है, यानी अंदर का तकवा लिबास से दिखता है। ये तो लिख ले, अंदर हया होगी तो लिबास जरूर ढीला होगा। अंदर की हया की कभी आपको दूसरों के सामने एक बोतल बनाकर पेश करती है कि इस बोतल का एक एक फिगर देख लो। कभी सोचा कि जिस्म का एक एक कट लोग देखते होंगे, और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जज्बात भड़कते होंगे तो क्या गंदगी ना होगी। अल्लाह हमारी खवातीन और खास तौर पर हमारी बच्चियों के लिबास को दुरुस्त करवा दे। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम की दुआ कीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए ऐसी चीजों को, उसके ऊपर कुछ और पहन लीजिए, उसको अंदर के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ऐसे लिबास पहन कर बाहर आना हैवानियत है। अल्लाह ने जानवरों के ऊपर एक खाल चिपका दी है, औरत भी अगर अपने जिस्म पर एक चिपकी हुई खाल या एक मर्द भी अपनी पैंट को इस तरह से टाइट बनाकर पहन के बाहर आए कि प्राइवेट पार्ट्स तक नुमाया हो, तो वो लिबास नहीं है। फरमाया, ये अल्लाह की निशानियों में से, नोट करें, ये लिबास अल्लाह की निशानी है। जरा सोचिए, अगर एक ही लिबास होता तो थक चुके होते, ऐसे जान भी छुटी होती, आधा वक्त तो हमारा कपड़े ही ले ले, हा? लेकिन बात यह कि जिनको कुछ नहीं करना उनको उसके साथ भी कुछ नहीं करना और उसके बगैर भी कुछ नहीं करना, तो बात यह है कि अल्लाह की निशानी समझिए इस लिबास को, ताकि याद रखे, ए औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे। जैसा इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में इनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो इनको इनकी शर्मगाहें दिखाए। देख लीजिए, माले हराम का लाजमी नतीजा है कि लिबास उतरता है। ये नहीं कहा कि उसको जन्नत का फल खिलाया, बल्कि क्या कहा कि वो उसका लिबास उतर जाए। तो शैतान की दुश्मनी लिबास के साथ है। हर दौर में देखिए, न्यूडिटी रही, क्लब नाइट क्लब्स रहे, दासियों के लिबास देखिए, और आज क्या पुराने मजाहिब में देखिए, मजहब के नाम पे शैतान ने हमेशा बेलिबास किया। इसीलिए इस्लाम कहता है कि अच्छा लिबास पहनो, अच्छे साफ सुथरे खुले ढीले डाले कपड़ों में नेकी करने को, नमाज पढ़ने को दिल भी करता है। लिबास अच्छा ना हो तो नमाज अव्वल तो पढ़ी नहीं जाती, पढ़ लो तो पढ़ी ना पढ़ी बराबर है। और फिर देखिए कि शैतान तो नहीं हमें दिखता, लेकिन वो और इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम इनको नहीं देखते, तुम इनको देखते नहीं। हमने शैतानों को इन्हीं लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते। हाईलाइट कीजिए, यह है ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौलि गुरूरा, अदुव मिन शैतान। कैसे अपने दोस्तों पे वो बुरी बुरी बातें इल्का करते हैं। आय 28-31, तकवा के खुद साख्ता मेयार है। अब ये बात का दूसरा रुख है, बिल्कुल ही लिबास को पीछे कर दो, यानी लिबास के नाम पर चंद कमी बेशियों का तस्करा है, और खास तौर पे मजहब के नाम पे जब वो ये करते थे। वह इजाफ आलू फाखिशतन कालू, और वो लोग जब कोई फुखश काम करते तो कहते कि हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ताला ने भी हमको यही बतलाया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फुखश बात की तालीम नहीं देता। क्या अल्लाह ताला के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनत नहीं रखते? आप कह दीजिए, मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त या हर मस्जिद में जाने के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो, और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि इस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ताला ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था, इसी तरह तुम दोबारा पैदा हो गए। यहां मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगी चीज, तफीमो सुन्ना सीरीज की बुक लिबास का बयान हमने मेरे दो साल से तो जायद ही होगा लंदन इंस्टीट्यूट में की थी, जिसमें ए टू जी यानी ड्रेस कोड ए टू जी विदाउट एनी एग्जैजरेशन, आप उसको सुनना चाहें तो आपको उसका लिंक दिया जाएगा और पढ़ना चाहें तो बुक भी मौजूद है, ताकि आप इफरात और तफरीत में ना रहें। यहां देखिए मक्का वालों की बात के लिबास उतार के हरम में जाते थे, न्यूडिटी कहते थे जिन कपड़ों में गुनाह करते हैं हम उनमें नमाज नहीं पढ़ेंगे। देखने में तो ये बात बड़ी वाहवाह लगती है लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। बिल्कुल इसी तरह आज भी लोग ऐसा करते हैं, तो आप उसको सुनने के बाद वाकई चीज की गवाही देंगे कि अल्लाह ने कितना बैलेंस रखा है। औरत और मर्द अच्छा कीमती खूबसूरत लिबास पहन सकते हैं लेकिन उसकी शरायत आपको जाननी पड़ेगी। इसलिए इंशाल्लाह हम इस मौजू पर अपने आप को मजीद सिखाने के लिए आगे चलेंगे। और फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ये जो बात कह दी कि सजदों के वक्त तो नेकी करते वक्त भी लिबास साफ सुथरा रखिए, मस्जिद में जाते हुए लहसुन प्याज नहीं खाना, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और इसी तरह से दीन के नाम पर भी, क्योंकि जब हम दीन के नाम पर बेढंगे हो जाते हैं तो लोगों को दीन फिर वैसा ही लगता है। बस लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी है और बस पर गुमराही साबित हो गई। दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसों में ना करे जिन पे गुमराही सब्त हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शयातीन को दोस्त बना लिया, वापस देख लीजिए शैतान का टॉपिक, और ख्याल रखते हैं कि वो राह रास्त पर हैं। ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। यानी लोगों ने मजहब के साथ खाने पीने का भी एक अजीब सा अंदाज रख लिया, ना अच्छा खा सकते हैं ना पी सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हलाल और तैयब खाइए और खाने के बाद खूब अच्छे काम कीजिए। आयत 30 में देखिए फरीकन हदा की बात थी, हिदायत की पैरवी करने वाले लोग कौन होते हैं सवाल कीजिए तो आपके सामने फ्लो चार्ट है। एक गिरोह कैसे हिदायत याफ्ता होता है, जब वो अल्लाह की हिदायत को पा लेता है, किताब की तालीमात पर अमल पैरा होकर और रसूलों के रास्ते पे चलकर। आप चाहते हैं हिदायत होना तो बस ये तीन काम कीजिए, जिसमें से एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है इस वक्त कि हम किताब सीख रहे हैं, अल्लाह ताला में नबी सल्लम के उसवे हसना पे भी चलने की तौफीक अता फरमाए। आगे आए 32 से 36, नबियों का तरीका अपनाना है जो बड़ा बैलेंस और बड़ा खूबसूरत तरीका था। قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي, ये उन सब लोगों के लिए जो दीन का नाम लेकर लोगों को अच्छे लिबास से रोकते हैं और जो बेचारे पहन ले उनको गिल्ट देते हैं कि हाय हाय आप इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं जबकि आप दीनदार हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए असबाब जीनत को जिनको इसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है और खाने पीने की हलाल चीजों को किस शख्स ने हराम किया। यानी ऐसे जैसे कोई आके डांटे, किसने इसको किया, मैंने कब कहा था, ये स्टाइल है। आप कह दीजिए कि ये शिया इस तौर पर कि क्यामत के रोज खालिस होंगी अहले ईमान के लिए, दुनियावी जिंदगी में मोमिनों के भी हैं, यानी दुनिया में भी मोमिनों को इसका हक है और क्यामत में तो सिर्फ मोमिनों को मिलेंगी। हम इसी तरह तमाम आयात को समझदारों के वास्ते साफ साफ बयान करते हैं। अब अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ आ गई है और अल्लाह करे कि हमें बात समझ आ जाए। आप फरमा दीजिए कि अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है इन तमाम फुखश बातों को जो ऐलानिया हैं और जो पोशीदा हैं, और हर गुनाह की बात को और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात न लगा दो जिसको तुम नहीं जानते, और हर गिरोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है। बस जिस वक्त इनकी मियादे मुअय्यन आ जाएगी इस वक्त एक साथ न पीछे फट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। अल्लाह ताला में मोहलत दे। ए औलादे आदम, अगर हम तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हो जो मेरे काम तुमसे बयान करें, तो जो शख्स महज तकवा इख्तियार करे और दुरुस्तगी करे, बस इन लोगों पर ना तो कुछ अंदेशा है और ना वो गमगीन होंगे, और जो लोग हमारे इन अहकाम को दो झुटलाएं और इनसे तकब्बुर करें वो लोग दोजख वाले होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने आपको मुझे इन सारी आयात में ये सिखा दिया कि अंबिया कराम के बताए हुए तरीके ही रास्ते पे रखने वाले हैं और इन्हीं पे चलकर तुम्हें भी हिदायत मिलेगी। अल्लाह ताला में अफरात और तफरीत से बचते हुए वो दीन लेने और देने वाला बनाए जो नबी सल्लम हमें देकर गए। आगे 37 से 39 जहन्नुम की खबर है, कैसे? फमन अजलमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबा, पस इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बताए। इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब में है वो इनको मिल जाएगा, हाँ हां तक के जबकि इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने आएंगे तो कहेंगे कि वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। वो कहेंगे वो सब हमसे गायब हो गए और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। 3 सेकंड गौर कीजिए इस आयत पे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, इनके साथ तुम भी दोजख में जाओ। जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी अपनी दूसरी जमात की निस्बत अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी, यहां तक कि जब इसमें सब जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, बस इनको दोजख का अज़ाब दुगना दे दो। अल्लाह ताला फरमाएगा सबका ही दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं। टूटी कहां पे कमंद? जहन्नुम में ले जाकर अल्लाह ऐसे लोगों को जमा कर देगा जो दुनिया में शैतानी चीजों को एक दूसरे के साथ आम करते थे। और क्या कहा जाएगा? और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, बस तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का मजा चखो। यानी जहन्नुम के अजाबों में एक अजाब लड़ाई और झगड़ा है। आगे बात हो रही है तकब्बुर की। इतना कुछ सुनते हैं रोज, हर आयत को सुनकर अपने आप को चेक करें कि कोई आयत मुझे ऐसी तो नहीं लग रही कि मैं ये कह दूं कि मैं नहीं मानूंगी। तो उसका जवाब है आयत 40 से 42 में, मुस्तकबिरीन यानी तकब्बुर करने वालों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाब لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे तकब्बुर किया इनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। इनके लिए आतिशे दोजख का बिछोना होगा और इनके ऊपर इसी का ओढ़ना होगा और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए हम किसी शख्स को इसकी कुदरत से ज्यादा कोई काम नहीं बताते, वही लोग जन्नत वाले हैं और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नतों के तरफ जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया और जहां कब्र में ही जहन्नुम की खिड़की खोल दी गई, बताइए इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। अल्लाह ताला में हर किस्म के तकब्बुर से बचाए और तकब्बुर क्या कि हक सामने आ जाए तो उसको मानने से इनकार कर देना। आयत 43, जन्नतियों का कलाम। अब आप सारी मेहनतें करके वहां पहुंच चुके हैं और जन्नत के दरवाजे से पहले अल्लाह ताला क्या करेंगे उसका तस्करा है। وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ। और जो कुछ इनके दिलों में कीना था हम इसको दूर कर देंगे, इनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया और हमारी कभी रसाई न होती अगर अल्लाह ताला हमको ना पहुंचाता। वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लेकर आए थे और इनसे पुकार कर कहा जाएगा इस जन्नत के तुम वारिस बनाए गए हो अपने आमाल के बदले। ओरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून। तो अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। देखिए जरा आयत 43 से क्या मिला। पहली बात है कि अल्लाह ताला के अहले जन्नत पर इनाम है, दिल की तमाम बीमारियों से निजात मिल जाएगी। यहां बैठे बैठे दिल को साफ कीजिए, मिन गिल की बात है कीने के साथ बुग़्ज़ के साथ अल्लाह आपको जन्नत में नहीं लेकर जाएगा, चाहे आप सारी दुनिया को पढ़ा दें जाएं जितना मर्जी पढ़ाएं। दिलों को साफ करके दीन के काम करेंगे तो ही बात बनेगी। हर जन्नती अपने दर्जे पर काने और मुतमईन होगा। ये तो हम यहां कोशिश कर लें, वहां जाकर फिर जो मिल गया उस पर ही मुतमईन होना होगा। और जन्नतियों के चेहरे हशाश बशाश होंगे। अल्लाह ताला में जन्नत में ले जाने के वाले काम करने की तौफीक दे। और आयत 43 से पता चला अलकल्बुल मोहतदी, हिदायत याफ्ता राह याफ्ता दिल है। जब ऐसा दिल हो तो क्या कैफियत होती है दिल की, शुक्रगुजारी की तौफीक मिल जाती है और दिल कदूरतों से पाक होता है। क्योंकि वमा कुन्ना ली नख्तदी लौलान हदान अल्लाह में जन्नती बता रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ अल्लाह की मदद से पहुंचा हूँ। तो आइए दिलों को साफ कीजिए और शुक्रगुजारी की कोशिश कीजिए। और फिर आयत 43 में मुतनफ़िर दिल, अल कल्बुल हाकिद, गिल से भरा हुआ दिल। तो जब दिल में गिल होता है तो क्या होता है, लिखिए। नंबर एक, मेहर और मोहब्बत से दिल खाली हो जाता है। खून का रिश्ता क्यों ना हो, सगा भाई बहन क्यों ना हो, एक दफा दिल में बाल आ जाए तो मोहब्बत ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ उछल के चली गई। और आज देखिए विरासत के झगड़ों पे भाई बहनों की मोहब्बतें कहाँ गई हुई हैं। फिर बाहमी एतमाद से बंदा दूर होता है। लाख खूबी उस बंदे में, जब गिल आ जाता है तो आपका उसे एतमाद छिन जाता है। और फिर रंजिश और इनाद से दिल भर जाते हैं। अल्लाह हमारे दिलों के गिल निकाल दे। आगे आयत 44 से 45, साहब असहाब आराफ, सूरत का नाम भी आराफ इन्हीं वाकयात पे। और इनको पढ़ते वक्त दुआ कीजिएगा कि अल्लाह कोई एक नेकी की कमी हमें जन्नत से महरूम ना कर दे, कि हम जन्नत में दाखिल होने की बजाय आराफ पे खड़े हों। तो असहाबुल आराफ का क्या किस्सा है, वनादा असहाबुल जन्नत असहाबन नार, और अहले जन्नत अहले दोजख को पुकार कर कहेंगे हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था हमने उसको वाकई के मुताबिक पाया, बस तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था तुमने भी इसको वाकई के मुताबिक पाया, यानी सच था वो वादा। वो कहेंगे कि हाँ। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो इन जालिमों पर। कौन कौन है जालिम, या जालिम की लिस्ट लीजिए, जो अल्लाह की राह से रूगर्दानी करते थे और इसमें कजी तलाश करते थे और वो लोग आखिरत के भी मुनकर थे। अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखे। फिर आयत 46 से 51, जन्नती और जहन्नमियों का एक मुकालमा है। व बैनहुमा हिजाब व अलल आराफ, और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और आराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे, वो लोग हर एक को इनके क्याफे यानी निशानियों से पहचानेंगे और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। अभी अहले आराफ दोजख और जन्नत के दरमियान जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और इसके उम्मीदवार होंगे, और जब इनकी निगाहें अहले दोजख की तरफ फेरेंगी या फिरेंगी तो कहेंगे हमारे रब हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल न करना। दुआ आ गई आपके पास तरतीब के साथ। आयत 47 सूरत अल आराफ, कालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिज जालिमीन। आप भी इस नियत के साथ पढ़िए कि अल्लाह हमें इन जालिम लोगों में शामिल न करना, वो जालिम लोग जो अल्लाह के रास्तों से रोकते हैं। और अहले आराफ बहुत से आदमियों को जिनको इनके क्याफे से पहचानेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने आप को बड़ा समझना, तुम्हारे कुछ काम ना आया। देख लीजिए यहाँ भी गैंग्स हैं बड़े बड़े जो इबलीस की मायत में काम करते हैं। क्या ये वही हैं जिनकी निस्बत तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत ना करेगा। इनको यूं हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ है और ना तुम मगमूम होगे, यानी जन्नत में जाने वालों को अल्लाह ताला बेगम और बेखौफ कर देगा। और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा ही पानी तो डाल दो या कुछ और ही दे दो जो अल्लाह ताला ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को काफिरों के लिए रोक दिया, यानी दोनों चीजों की काफिरों के लिए बंदिश कर दी जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहू लायब बना रखा था। देखिए यहाँ काफिर से मुराद कौन सा काफिर है, वो शख्स जो मुसलमान होकर भी लहू और लाभ में पड़ गया और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। बस हम भी आज के रोज इनका नाम भूल जाएंगे जैसा कि वो इस दिन को भूल गए और जैसा ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। तो जहां नोट कीजिए आयत 51, अल्लज़ी नत्तखज़ू दीनहुम लहवन वलाइबन वगर्रतहुम अलहयात अद्दुनिया। दीन को दिल लगी और खेल बनाने वाले लोग कैसे होते हैं, चेक करना पड़ेगा ना हमें। तो वो लोग होते हैं जो दुनिया की जेब व जीनत में खो जाते हैं, इनके दिलों में दुनिया समा जाती है, फिर मादी साजो सामान पाकर अपने आप को कामयाब समझने लगते हैं और आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना कर दे। और फिर दोबारा दावत दी जा रही है कि देखो सिर्फ एक नेकी की कमी तुम्हें ले जा रही है आराफ पे, तो आज नेकियों की कदर करो और नेकियों की तरफ बुलाने वाली किताब किताब हिदायत है। आयत 52-53 किताब हिदायत और रहमत वलक़द जीनाहुम भी किताब कैसे आयत 52 में देखिये हुदं व रहमतन लिकौमी यूमिनून में सिर्फ ईमान वाले इताअत गुजार लोग ही हिदायत और रहमत पाते हैं। इससे ये पता चलता है वो कैसे और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने इल्मे कामिल से बहुत वाज़ह करके बयान कर दिया। आप गवाही देते हैं इस बात की, यही किताब है जिसकी बात आपके साथ की जा रही है, वही आप और मैं पढ़ भी रहे हैं। कितनी खुशबख्ती है कि आज हम इस किताब के साथ जुड़े हुए हैं। वो जरिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो ईमान लाए, अल्लाह सब सुनने वालों के लिए इस किताब को हिदायत का भी जरिया बना दे और रहमतें भी इन पे निशावर कर दे। इन लोगों को और किसी बात का इंतजार नहीं, सिर्फ इसके आखिरी नतीजे का इंतजार है। जिस रोज इसका आखिरी नतीजा पेश आएगा और इस रोज जो लोग इसको पहले से भूले हुए थे यूं कहेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। आज अमल का वक्त है, आज लोगों को बुला लीजिए, इस किताब की दावत दे दीजिए, कल तो मौका नहीं रहेगा। क्योंकि सब क्या हमारा कोई सिफारिशी है कि हमारी सिफारिश कर दे, या क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग इन अमाल के जो हम किया करते थे बरखिलाफ दूसरे अमाल करें। बेशक इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया और ये जो बातें तराशते थे सब गुम हो गई। वो तालिब इल्म जो पर्चा देख कर ये हसरत करे, क्या फायदा, अब क्या फायदा। तो आज आपके मेरे हाथ में किताब है, पढ़ लीजिए, कल ये किताब हमारे हाथ में नहीं रहेगी। आगे आयत 54-56 कायनात की कुछ निशानियां। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्ध, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ताला ही है जिसने सब आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा कर दिया फिर अर्श पर कायम हुआ। वो रात से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वो रात इस दिन को जल्दी से आ लेती है और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब इसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह ही के लिए खास है खालिक होना और हाकिम होना। बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, गिड़गड़ा के भी और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह तआला इन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं। तो देखिएगा आयत 54 में पैदा करना और हुक्म देना अल्लाह का काम है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, बाकी सब उसकी मखलूक है। अल्लाह ताला मखलूक के औसाफ और अफाल को तख्लीक करने वाला, हुक्म देना अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा कर लेता है तो इसे कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत पे रखने का कुन कह दे और दुनिया में इसके बाद कि इसकी दुरुस्तगी कर दी गई, फसाद मत फैलाओ। नोट कीजिए इस जुमले को, गुनाहों से फसाद फैलता है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी दुनिया को प्लूट ना करो और तुम अल्लाह की इबादत करो इससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए, बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नजदीक है। क्या पता चला कि जब दुनिया में गुनाह होते हैं तो फिर अल्लाह ताला दुनिया को साफ करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की आफात लेकर आता है। आयत 57-58 बंजर और जरखेज जमीन को बिल मुकाबिल पेश किया जाएगा और इसको पढ़ते वक्त दिलों को देखिएगा। माशाल्लाह 8 पारों के करीब हमने सुन लिया। क्या मेरा दिल बंजर था कि अभी तक हिदायत का पौधा नहीं लग रहा, या जरखेज था कि इसके ऊपर अब हिदायत के पौधे लगने वाले हैं इंशाल्लाह। वहुवल्लज़ी युर्सिलुर्रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह, और वो ऐसा है कि अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं, यहां तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम इस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हांक ले जाते हैं, फिर इस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर इस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं, यूं ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे। क्या यही काम कुरान इस वक्त आपके साथ नहीं कर रहा? कैसे कुरान दिलों पर पड़ रहा है और दिल में एक नेकियों के जज्बे उभर रहे हैं। और जो सुथरी जमीन होती है इसकी सब पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो खराब है इसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। इस तरह हम दलाइल को अच्छी तरह से बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र करते हैं। यहाँ जमीनों की बात में दो तरह की जमीनों की बात हो गई थी, एक थी बलदुत तैयब और दूसरी थी खबूसा, ला यखरुज इल्ला नकीदा। असल में ये इस्तियारा था, अब इधर से आगे वो सिलसिला शुरू होगा जो अगले पारे में भी कंटिन्यू होगा। अंबिया कराम के किस्से, अल्लाह ने अंबिया कराम को मुख्तलिफ कौमों में भेजा तो लोग भी दो तरह की जमीनें ही साबित हुए। बहुत थोड़े लोगों ने अंबिया कराम के किस्से सुन के हिदायत ले ली, उनकी बात सुनी और मान गए, और बहुत सारों ने नहीं माना। यहाँ चूंकि तरतीब के साथ पहली दफा आ रहा है तो चंद बातें समझ लीजिए। वैसे आपको सूरत अल-आराफ में, फिर सूरत शूरा में, और इसके बाद आपको आगे सूरत कसस में भी अंबिया कराम के किस्से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को सबसे पहले भेजा था, उन्हीं का किस्सा है। बल्कि ऐसा करूंगी कि कल के पारे के शुरू में आपको कुछ चीजें दूंगी ताकि आप फ्रेश होकर सुने। अभी हम पढ़ते हैं हजरत नूह का किस्सा, आयत 59 से 84, अंबिया कराम के किस्से। लकद अरसलना नूहन इला कौमी, हमने नूह अलैहि सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद होने के काबिल ही नहीं। नोट करें इसको, मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। नबी डराते डराते दुनिया से चले गए। इनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा, हम तुमको सरीह गुमराही में देखते हैं, सरी गलती में देखते हैं। ये बड़े लोग कौन है जो जुखरुफ अल कौला में आते हुए इबलीस के कारिंदे बन चुके, अदूवच जिनकी बात पारे के शुरू में देखी, यहां तक देखिए उसका रब मिल रहा है। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम, मुझमें तो जरा सी भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूं, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूं, और मैं अल्लाह ताला की तरफ से इन उमूर की खबर रखता हूं जिनकी तुमको खबर नहीं। अंबिया कराम का बेलॉस होना, हार्ड वर्किंग होना, बगैर किसी माली या मादी मुनाफे के ये काम करते जाना आपको इसमें दिख रहा है। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है, यानी तुम्हारा हम जिन्स है, कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। देखिए अंबिया कराम का पैगाम इंजार और फिर तबशीर से भरा हुआ। सो वो लोग इनको झुटलाते ही रहे तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इनको जिनके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था इनको हमने गर्क कर दिया, बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। और हमने, यानी यहां कौम नूह का जिक्र पूरा हुआ, कल इंशाल्लाह पारे के शुरू में आपको यहां से पूरी तरतीब सीख के बताऊंगी कुछ बातें जो यकीनन आपके लिए फायदेमंद होंगी। और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बस क्या तुम डरते नहीं। इनकी कौम में जो बड़े लोग थे काफिर, यानी जो बड़े लोग थे काफिर थे, उन्होंने कहा, हम तुमको कमकली में देखते हैं और हम बेशक तुमको छोटे लोगों में, झूठे लोगों में समझते हैं। देखिए इतने ताने आपको मिले या मुझे मिले नेकी करते हुए तो मैं तो छोड़ जाऊं कि जी मैं इतनी बातें क्यों सुनूं, लेकिन अगर आप जान इन सारी बातों के बावजूद खड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह के लिए काम करने वालों में से हैं। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम, मुझमें जरा सी भी कम अकली नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगम्बर हूं, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूं। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए, और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौमे नूह के बाद जानशीन बनाया और डेल डोल में तुमको फैलाओ ज्यादा दिया, बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुमको फलाह हो। कितने बेलॉस होते थे नबी, और अल्लाह के लिए काम करने वाले ऐसे ही बेलॉस होते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास इस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे इनको छोड़ दें, वही धान के पान, बस हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। अपने लिए खुद अजाब मांग रहे हैं, गोया कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गजब आया ही चाहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाप में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया है, इनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी, बस तुम मुंतजर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। गरज हमने इनको और इनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। पता चला कि नबी अजाब नहीं ला सकते, अल्लाह ही लाते, वरना तो नबी खुद ही उठा ले। और हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह अलैहि सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ह दलील आ चुकी है। ये ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, बस इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाती फिरे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना कि कहीं तुमको दर्दनाक अजाब आ पकड़े। और तुम भी हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नरम जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है? यानी आप देखिए कि बदगुमान करना चाहते हैं रसूल से लोगों को, क्या कि सालेह अलैहि सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं। उनका यकीन भी देख लीजिए साथी, किस पर यकीन रखते हैं? जिनको देकर भेजा गया। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे, तुम जिस बात पर यकीन लाए हो, हम तो इसके मुनकरीन हैं। बस उन्होंने इस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सवाले, जिसकी आप हमको धमकी देते थे, इसको मंगवाइए अगर आप पैगम्बर हैं। देखिए जाहिल कौमें अपने लिए अजाब ऐसे मंगवाती हैं जैसे खाना मंगवाया जाता है। पस इनको जलजले ने आप पकड़ा और वो अपने घरों में ओंधे के ओंधे रह पड़े। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़कर चल निकले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। दर्द महसूस किया अपने साइड का? जब आपके बच्चे आपकी बात ना माने तो शायद आप भी उनको यही कहते होंगे। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फुहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहां में नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो और औरतों को छोड़कर, यानी औरतों की बजाय मर्दों से ताल्लुक कायम करते हो, बल्कि तुम तो हद से ही गुजर गए हो। और इनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। हर दौर में लोगों को ऐसी बातों पे बात करना बुरा लगा। बस हमने लूत अलैहिस्सलाम को और इनके घर वालों को बचा लिया सिवाय इनकी बीवी के, कि वो इन्हीं लोगों में रही जो अजाब में रह गए थे, और हमने इन पर सरीख तरह का मी बरसाया। बस देखो तो सही इन मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। पत्थरों की बारिश हुई थी इस कौम के ऊपर। और यहां से आगे फिर एक और कौम का तस्करा, आयत 85-87, माली बिगाड़ के लिए कौम मदियन यानी कौम शुएब का तस्करा है। वइला मदयन अखाहुम शुएबा, और हमने मदियन की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आप नोट करें, हर नबी की दावत बिल्कुल एक है, कोई अपनी तरफ बुलाना या अपनी तरफ जोड़ना मकसूद नहीं था, बल्कि किस बात का यकीन था उनको कि हम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और उसी के नुमाइंदे हैं। लिहाजा क्या करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़े दलील आ चुकी है, बस तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीजें कम करके मत दो, और वह जमीन में इसके बाद कि इसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नाफे है अगर तुम तस्दीक करो। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको, और इसमें कजी की तलाश में लगे रहो। और इस हालत को याद करो जब तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया। हर चीज पहले थोड़ी होती है फिर ज्यादा होती है, नेकियों और बदियों दोनों में अल्लाह ताला का यही असूल है। आप जिधर कोशिश करेंगे, जिधर मेहनत करेंगे, वही चीज ज्यादा होती जाएगी। दुआ कीजिए कि हमारी नेकियां ज्यादा हो जाएं हमारे गुनाहों की निस्बत। फरमाया कि पहले तुम थोड़े थे, ज्यादा कर दिया, और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझे भेजा गया है ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए, तो जरा ठहर जाओ यहां तक कि हमारे दरमियान अल्लाह ताला फैसला किए देता है, और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। तो बात यह है कि अल्लाह ने हर नबी की कौम का हाल हमें सुना दिया, और बता दिया कि हम अपने आप को कहाँ खड़ा करते हैं। तो पूरे पारे में आपने देखा कि शैतान और शैतान की चालें हमारे साथ साथ रहीं, लेकिन अल्लाह से मदद और अल्लाह के साथ बेहतरीन ताल्लुक की वजह से एक इंसान इंशाल्लाह जन्नत तक पहुंचेगा। पारे के शुरू में ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौली गुरूरा की बात थी और पारे के आखिर में एक नबी की कौम का किस्सा पूरा नहीं बल्कि आधा बीच में छोड़कर किस आयत पे पूरा किया गया, बहुवा खैरुल हाकिमीन। इससे रब देखिए कुरान का कि जब तक अल्लाह ताला को खैरुल हाकिमीन नहीं बनाएंगे शैतान के चुंगल से आजाद नहीं होंगे। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। अलामा इकबाल कहते हैं कि तुम अल्लाह को सजदे भी करते हो लेकिन दोस्तियां तुम्हारी इबलीस से भी बहुत सारी हैं, तो ये बताओ कि हशर में फिर किसकी अकीदत के सिले लोगे, अल्लाह से या इबलीस से। अल्लाह ताला हम सब को बचा के रखे, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए, कबूल कर ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व तूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी ये रिक्वेस्ट है कि शेयरिंग सुनवा दें। चलिए ठीक है, यहाँ से भी फरमाइश चाहिए तो आपको शेयरिंग सुनवा देते हैं साथी
जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम फरहत है, आई लिव इन द यूएसए और मैं उस्तादा से मिली थी 20 इयर्स अगो। एक्चुअली किसी के घर पर एक गैदरिंग थी मेरे फैमिली के अंदर, तो मैं ड्राइव करके जा रही थी। आई जस्ट हैड माय थर्ड बेबी, घर पे छोड़ के पहली मेरी आउटिंग थी आफ्टर दैट, और रास्ते में खूब जबरदस्त म्यूजिक सुनती हुई मैं जा रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से मुझे रोना आने लगा, हो सकता है हार्मोनल भी हो, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे बेहद शौक था गाने वाने सुनने का ना। गाड़ी में नहीं बैठती थी मैं, लेकिन ये कि मैं उस वक्त जो थी मैंने उसको बंद कर दिया और मुझे इतना रोना आ रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं किस सड़क से जा रही थी, तो अचानक से पता नहीं क्यों मेरे अंदर मेरा मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू रिसाइट सूरत फातिहा, और मैं कोई बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, मुश्किल से कुछ चंद नमाजें पढ़ना शुरू की थी रिसेंटली, वजू वजू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन समहा अल्लाह ने दिल में डाल दिया था कि एटलीस्ट नमाज पढ़ो, शुक्र गुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का। एनीवे तो मैं सूरत फातिहा पढ़ते पढ़ते रोती धोती मैं पहुंची अपनी कजन के घर, और आईने में देखा तो बुरा हाल था मेकअप का, उसे ठीक किया। अंदर गई घर के ऊपर तो वहां पे गैदरिंग थी और एक प्यारी सी यंग सी लड़की बैठी हुई वहां पे मुस्कुरा मुस्कुरा के दर्स दे रही थी, तो मैं हैरान थी कि ऐसे भी दर्स होते हैं। तो हमने तो बड़े डांट डपट डरावने वाले दर्स सुने थे पाकिस्तान में, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन लोगों को भी जज़ाए खैर दे, आमीन। तो आई जस्ट सैट डाउन एंड इट वाज इन द मिडल ऑफ द दर्स एंड शी सेड समथिंग वेरी प्रैक्टिकल के दैट रियली कॉट माई अटेंशन, के अल्लाह ताला ने इतनी कॉम्प्लेक्स एक क्रिएशन बनाई है ह्यूमन बींग्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने यहाँ भेज दिया बजाय बगैर किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के, क्योंकि हम कोई भी अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं उन्होंने कहा, तो उसको समझने के लिए कि अभी हमें उसकी मैनुअल चाहिए होती है, एंड दैट मेड सो मच सेंस। कभी पढ़ा नहीं था ट्रांसलेशन कुरान की, जाहिर है तो मैं बहरहाल ये कि मैं बहुत क्यूरियस हुई उसके बारे में। फिर जब वो यंग सी लड़की जाने लगी तो मैं थोड़ी सी घबराई, क्योंकि मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था कि मैं किसी को इस तरह से अबाया नकाब वगैरह के अंदर देखूं, लेकिन ये कि मुझे कुछ सवाल भी पूछने थे उनसे, और तो मैं पहले हेसिटेट किया, मैंने कहा नहीं मुझे तो पूछने पड़ेंगे क्योंकि फिर मुझे उसका जवाब नहीं मिलेगा। खैर थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद घर जाके मैंने ट्रांसलेशन से पढ़ना शुरू किया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने जिक्र किया कि यही है उस्ताजा इफ़त मखूल, और ये कोई क्लासेस शुरू कर रही है मेरे घर के पास, और वंस अ वीक कुरान के. मैंने कहा ओके वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने 10 सिपारे जो थे वो पढ़ लिए थे उस वक्त तक ट्रांसलेशन, और मुझे बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा कुरान. तो मैंने कहा चलो लेट मी ट्राई दैट. तो मैं वहां आती थी और अपने बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े थे, स्लीवलेस कपड़े पहने रहे, लेकिन उस्ताज़ा ने कभी उस पर कॉमेंट नहीं दिया कोई, बल्कि वेलकम किया. और उनको इतना पुख्ता यकीन था कि कुरान खुद जब इंसान सुनता है तो खुद ब खुद उसमें तब्दीली आती है. खैर मुझे तो नहीं पता था कि कौन सी तब्दीली आएगी, मैं तो सिर्फ पढ़ना जा रही थी. उसके बाद फिर फौरन ही दिस वॉज द फॉल ऑफ 2001, विच इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट टाइम यू नो फॉर मुस्लिम्स इन अमेरिका. खैर बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर दौरा कुरान का जो शुरू हुआ, तो हम लोग, आप लोग अभी 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, हम लोग 4-4 घंटे पढ़ते थे और लाइव पढ़ रहे होते थे. वॉज अ मोस्ट इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. उसके बाद मेरी फ्रेंड्स भी साथ साथ थी, हम बेहद एक्साइटेड होते थे. ऐसा लगता था एक बटन दबा दें और सब कुछ पता चल जाए हम लोगों को. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस आने शुरू हुए. फैमिली वालों वाले जरा अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए. उसके बाद काफी मुखालफत भी हुई. उस जमाने में उस वक्त मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरा ट्रायल था, बच्चे भी छोटे थे. अल्लाह ताला ने पता नहीं किस, आई डोंट नो कि मैं क्या सोच रही थी उस वक्त, लेकिन ये कि मुझे सिर्फ एक ये था शौक कि बस मैंने किसी भी हाल में कुरान पढ़ना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड को बहुत खुश रखूंगी, जो भी है मैं हर चीज सह लूंगी. कोई कुछ भी कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मैं सह लूंगी. एंड आई वाज जस्ट वेरी ड्रिवन. आहिस्ता आहिस्ता यू नो टाइम गुजरता गया, मुश्किलात एक्चुअली बढ़ती गई घर में, बाहर भी, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, मेरे पेरेंट्स, एवरीबडी वॉज रियली वरीड कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे. मुझे फैमिली वाले लेके गए एक साइकाइट्रिस्ट के पास, दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास, तीसरे साइकाइट्रिस्ट के पास कि शायद इसको कोई यू नो शी इज मेंटली इल, ये क्यों कर रही है ऐसा. क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफी लिबरल सा था, मैं बहुत डिफरेंट माहौल में पली बड़ी थी. तो एनीवे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ शौक बढ़ता गया. फिर उस्ताजा ने ही मुझे इनकरेज किया कि मैं और थोड़ा सा पढ़ूं. बहुत ही मिरेकल था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाजत दे दी थी, और ये अल्लाह की जाहिर है बहुत रहमत थी कि मैं और आगे पढ़ सकी. कोर्स किया मैंने एक और. उसके बाद यू नो साजा से इन टच रहती थी मैं. फिर वो मूव भी हो गई थी नॉर्वे. यहाँ पे कुछ लोगों ने मैंने कोर्स किया था कहीं और से, और उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम भाई मुझे पढ़ा दो, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, शी वर्क फुल टाइम, कि मैं मुझे कर ही नहीं सकती, मैं कहाँ जाऊंगी ना. तो मैंने कहा, मैं बहुत हैरान थी, मैंने कहा है अच्छा, तो हेमो गुमान में भी नहीं था. तो मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है आ जाओ. तो घर पे आती थी तो वो अपनी भाभी को भी ले आई, वो किसी और को ले आई, थोड़े लोग जमा हो गए. तो अल्हम्दुलिल्लाह होते होते यू नो काफी काम करने का मौका मिला अपने शहर में, अपनी कम्युनिटी में. और इत्तेफाक की बात है कि 20 साल गुजर गए इस बात को कि जब उस्ताज़ा का पहला दौरा कुरान था, और अब मैं नूरुल कुरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल के बाद 20वां. जब माशाल्लाह एंड कंग्रेचुलेशंस उस्ताज़ा, ऑनेस्टली अल्लाह ताला आपको बे इंतहा अजर अता फरमाए, आपकी सोच से कहीं ज्यादा अमीन, कि 20 साल में अब दोबारा से मैं उस्ताज़ा का सुन रही हूँ. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से मुझे से बात कर रही हैं, क्योंकि इंसान का ईमान जो होता है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है. और कभी कभार हम इसी काम में, हालांकि मेरा काम ही यही है इसी फील्ड के अंदर, मैं खुद भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम सबको जरूरत होती है एक फ्यूल की, हम सबको जरूरत होती है यू नो न्यूट्रिशन की. हमारी सोल, हमारा दिल कभी कभार बहुत ड्राई और बैरन हो जाता है. تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ میں کس سے سنوں, اور میں نے ساری اپنی جو میں کام کرتی ہوں اس کو آن ہولڈ کیا, میں کہ نہیں آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف. تو آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی زیادہ اسٹرینتھ مل رہی ہے استاذہ کی آواز سے, ان کے انداز سے, اور سب سے زیادہ کہ قرآن سے. میرے پاس کئی آپشنس تھے, میں نے ایکسپلور کیے کہ میں کس سے سنوں گی, لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ میرا دل ویسے ہی ہو جائے جیسے کہ پہلے تھا. وہ اتنا ہی سرور, اتنی ہی خوبصورتی, اتنی ہی خوشی اور ڈیلائٹ, اینڈ دیٹ سویٹنس آئی وانٹیڈ ٹو ہیو دیٹ اگین. آئی فیلٹ آئی نیڈ ان مائی ہارٹ ٹو ٹرن بیک ٹو دا وے اٹ واز بیفور اینڈ مے بی ایون بیٹر, اینڈ دیٹ از واٹ آئی ایم, دیٹس وائی آئی ایم ہیئر, آئی ایم لسننگ اگین, اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی یہ بات سنے میرے لیے ضرور دعا کرے دل سے. میں دل سے اس وقت میں نے ہدایت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے, اور آج میں دوبارہ سے دل سے اللہ تعالیٰ سے پھر سے ہدایت مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اب آخری عمر جو ہے وہ اس سے بھی بہتر گزار دے جتنی کی پچھلی گزری. آمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ فور نور القرآن, ایبسلوٹلی لونگ دا ویڈیوز اینڈ آل آف دس, دی امیزنگ پاور پوائنٹس, واٹ این امیزنگ تھیم. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے درجے آپ کی سوچ سے زیادہ بلند کرے. آمین. اور اس یقین کے ساتھ کام کرتے رہیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کام کتنی زیادہ اور آگے خیر پھیلاتا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. یہ ہے اومن خانہ مئی تنفا نورن. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں بھی نور لے کر آئے روشنیوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.